ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. பகத் குஷி கி பாத் ஆஜ 7 டிசம்பர் ஹை 2010. பகத் தினோ கே பாத் ஹம் ஆப்கே பீச் மே பேட்டே ஹேன் ஸ்ரீ விருந்தாவன் தாம் மே நிவாஸ் கர்னே கே பாத். தோ ஆஜ் கா திவஸ் பஹுத் பவித்ர திவஸ் ஹை, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल के जो प्रेरणा स्रोत हैं, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का आज जन्म दिवस है. तो ऐसे कहा जाता है कि जैसे अगर भगवान को प्रसन्न करना है तो उनके भक्त का गौरव करना चाहिए, अगर भक्त को प्रसन्न करना है तो भगवान का गौरव करना चाहिए. और ऐसे भी कहा गया है कि अगर हमारे सामने भगवान और उनके भक्त खड़े मिलेंगे तो सबसे पहले हमारे हमको किसके पैर लगना चाहिए, किसके पैर छूना चाहिए? भगवान भी खड़े हैं, गुरुदेव भी खड़े हैं. क्यों ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि हम भगवान को पहचानते नहीं हैं, उन्होंने हमके हमारी भगवान से पहचान करा दी. भगवान को जानने का रास्ता वो है कि सबसे पहले हमको गुरु के चरण स्पर्श करना चाहिए, फिर भगवान का चरण स्पर्श करना चाहिए. और अगर आप गुरु का चरण स्पर्श करते हैं तो भगवान का नहीं भी करते हैं तो भी चलेगा, क्योंकि भगवान उसे भी प्रसन्न हो जाते हैं. भगवान और उनके भक्त में एक चिरंतन प्रतियोगिता चलती रहती है, कॉन्स्टेंट कॉम्पिटिशन. क्या कॉम्पिटिशन है वो? कौन किसका अधिक गौरव करे. भगवान अपने भक्त का गौरव करने में तुले हैं और भगवान के भक्त जो है उनका गौरव करने के लिए तुले हुए हैं. चिरंतन प्रतिस्पर्धा चल रही है, इनका गौरव करते हैं वो उनका गौरव करते हैं. कुछ बड़ा अच्छा काम होता है तो भगवान अपने भक्त को उसका श्रेय देना चाहते हैं और उसी कार्य का श्रेय भगवान के भक्त जो हैं वो भगवान को देना चाहते हैं. जैसे मदन मोहन जी भगवान जो थे, उन्होंने जब भी जमुना जी से रामचंद्र कपूर का झाग बचाया, तूफान से बचाया, तो मदन मोहन जी ने कहा कि वो संत है ना ऊपर सनातन गोस्वामी, इनकी कृपा से आपका जहाज बच गया. और सनातन जी गोस्वामी कहते हैं कि वो मदन मोहन जी की कृपा से आपका जहाज बच गया. ये प्रेम है भगवान का और भक्त का बीच में. इसीलिए यही ऐसे भक्त जो है भगवान के, ये हमें भगवान से परिचय करा सकते, भगवान से हमारा संबंध जोड़ सकते. और हमारे लिए ये केवल हमारे गुरु इतना ही नहीं है, जहां पर हम काम कर रहे हैं, ये संस्था जो बनाई गई है, इसके पीछे प्रेरणा वही है. ये जो दूरदृष्टि थी उनकी, क्योंकि प्रभुपाद जी जब थे तो उनके समय पे कोई हॉस्पिटल नहीं बनाना, उल्टा प्रभुपाद जी कहते थे कि जो लोग मायावादी हैं, जो लोग ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाते हैं, वहां पर परेशान हो जाते हैं, वो तो दोबारा जब पृथ्वी पर गिरते हैं मनुष्य के रूप में तो वो हॉस्पिटल खोलते हैं. ऐसा उन्होंने बताया था. तो लेकिन वो हॉस्पिटल जो है जहां पर केवल शरीर का इलाज होता है, ऐसे हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, केवल मतलब सामाजिक कार्य होता है, समाज सेवा के रूप में, मानव सेवा के रूप में. लेकिन ये अस्पताल केवल मानव सेवा के लिए नहीं, यहां मानव सेवा जो है वो ईश्वर की भावना से करते हैं. मानव सेवा केवल मानव सेवा के लिए नहीं करते, मानव सेवा हर मानव को भगवान का अंश के रूप में देखते हुए भगवान की सेवा के रूप में मानव की सेवा करते हैं, वो सच्ची मानव सेवा है. जैसे अगर आप डूब रहे हैं, जो सचिन पाटिल डूब रहे हैं समुद्र में और हमने उसका अच्छा पट्टे वाला शर्ट निकाल के देखा, हमने बचाया बचाया बचाया, इतना कीमती शर्ट बचाया, तो आप सब लोग हंसेंगे कि नहीं हंसेंगे? अरे सचिन पाटिल तो डूब गया, शर्ट लेके आया उसका, कौन सी बड़ी सेवा है, क्या वैल्यू है उसका. और कभी कभी हॉस्पिटल में बोलते ना, ऑपरेशन सक्सेसफुल पेशेंट डाइड, तो क्या मतलब है उसका? तो बिना भगवान की भावना से मरीज की सेवा करना मतलब ऑपरेशन सक्सेसफुल पेशेंट डाइड. इस तरह से हमको वो सेवा करनी है, आत्म सेवा, शरीर के साथ साथ मन और बुद्धि और क्या, बॉडी माइंड एंड सोल, शरीर मन और आत्मा, इनके साथ में सेवा करनी, तभी जाकर शरीर की और मन की सेवा जो है आत्मा की सेवा के कारण परिपूर्ण हो जाती है. ये जो दूरदृष्टि थी, ये जो विजन था, ये हमें प्रभुपाद जी के प्रतिनिधि के रूप में परम पूज्य राधानाथ महाराज ने दिया। और उस समय उतनी कल्पना भी निश्चित नहीं थी सब भक्तों के मन में कि क्यों हॉस्पिटल खोल रहे, हॉस्पिटल क्यों खोलना चाहिए, मंदिर खोलो, अगर जगह है भक्त हैं तो मंदिर खोल लो, कीर्तन करो वहाँ पर, प्रसाद बांटो, किताब वितरण करो। लेकिन वो जानते थे कि जब आदमी बीमार पड़ता है ना तो वो कितना भी बड़ा आदमी होगा, भारत का पंतप्रधान भी होगा, राष्ट्रपति भी होगा ना, वो नम्र रहता है, डॉक्टर जो बोलता है वो सुनता है। ये हमारे नेता लोग ना, शरद पवार, बाला साहब ठाकरे, सब लोग एडमिट जब होते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं वो सुनते हैं अच्छी तरह से, जो पत्ते बोलते हैं वो पत्ते भी करते हैं, वो बोलेंगे 15 दिन शराब मत पियो, शराब भी छोड़ देते उसके बाद पीते हैं, लेकिन 15 दिन कम से कम पालन करते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि बड़े से बड़ा जो अहंकारी व्यक्ति होता है वो भी हॉस्पिटल में आने से बीमारी के कारण नम्र बन जाता है, बोलता है डॉक्टर साहब हाथ जोड़ के जल्दी ठीक करो, मुझे बहुत आप बड़े काम करने हैं, आप जो बोलेंगे मैं करूंगा, सब पत्ते पालन करूंगा, जल्दी ठीक करो। तो ऐसे नम्र अवस्था में जब वो यहां पर आता है, बड़े से बड़ा आदमी या कोई भी आदमी आता है, तो उसको कृष्ण भावना, भगवान की भावना देना आसान होता है, भगवान के विषय में बताना आसान होता है। और एक कारण है उसका, हॉस्पिटल में कैसी सुविधा अनुकूल होती है, क्योंकि अगर नास्तिक भी आदमी होगा ना तो वो जब बीमार पड़ता है तो बोलता है सिस्टर आप अपने भगवान से प्रार्थना करो मेरे लिए, जल्दी अच्छा हो जाए, है ना। कितना भी नास्तिक होगा तो जब उसको भयंकर बीमारी होती है, जो चिकनगुनिया हो गया, 105 में भगवान उसको बॉइल कर रहे हैं अच्छी तरह से, 105 सेंटीग्रेड है, जब बुखार आता है तो बड़ा बड़ नास्तिकता जो है वो आस्तिकता में उसका रूपांतर हो जाता है अपने आप ही। बोलते सिस्टर आप भगवान के भक्त हो ना, आप कृष्ण भगवान को मानते हो ना, जरा कृष्ण भगवान से हमारा भी जरा एप्लीकेशन दे दो, जल्दी अच्छा होने का। तो बोलेंगे मैं करूंगी एप्लीकेशन, आप भी करो अपनी तरफ से। हाँ मैं भी करूंगा, क्या बोलना है बोलो, क्या बोलना है, बोलेंगे हरे कृष्ण बोलो, तो तुरंत बोलते या जीसस का नाम लो या अल्लाह का नाम, हाँ ले लेंगे, कभी नहीं लिया आज तक, अभी हैबिट भी नहीं है, कौन सा मंत्र बोलेंगे मालूम नहीं, ये मंत्र बोलो, ऐसा पकड़ो, हाँ बोल लेते। मतलब जब बीमार होता है आदमी तो उसकी मनोभावना भगवान के लिए अनुकूल होती है, और यहीं से हम उनको भगवान की भावना दे सकते हैं। हमारे ब्रह्मानंद स्वामी जो हैं, जो प्रभुपाद के एकदम पहले सन्यासी शिष्य में से, वो यहां पर एकदम आए थे, तो प्रभुपाद जी का बहुत निकट थे, वो बहुत निकट, सब जानते थे प्रभुपाद जी के मन में क्या था, क्या बोलते थे। तो जब यहां पर आए तो उन्होंने मुझे बताया पर्सनली कि जब प्रभुपाद ने कहा था कि हॉस्पिटल नहीं खोलना चाहिए, तब उनके मन में भक्तिवेदांत हॉस्पिटल नहीं था, लेकिन इस जगह पर प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न है, ये मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर केवल शरीर का इलाज नहीं होता है, पैसे के लिए, बिजनेस के लिए केवल शरीर का इलाज नहीं होता है, यहाँ पर भगवान की सेवा, भगवान की भावना के लिए, भगवान को हम संतुष्ट करने के लिए उनकी भावना से लोगों के शरीर की सेवा होती है। तो ये सारी जो दूरदृष्टि है ये महाराज जी ने बहुत पहले से मन में उनकी थी, बहुत प्रयास से उन्होंने सबको समझाया, नहीं तो हम सब लोग अलग अलग प्रैक्टिस कर सकते थे अपना परिवार चलाने के लिए, डॉक्टर संकेत, डॉक्टर दलाल, इससे 10 गुना पैसा कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने साथ में रहो, एक साथ में मिलकर करो, तब जाकर भगवान प्रसन्न हो जाते, सहयोग और कोऑपरेशन जो होता है ना उसमें भगवान को सबसे बड़ी प्रसन्नता होती। तो ऐसे हमारे राधानाथ जी महाराज, इनका जन्म जो है वो शिकागो में हुआ 1950 साल में, तो जन्म से जू हैं, जू जाते हैं ना, एक जू धर्म होता है जिसका टोरा नाम का धर्म ग्रंथ होता है, जैसे हमारा हिंदू धर्म का भगवद्गीता धर्म ग्रंथ है, क्रिश्चियन लोगों का बाइबल ग्रंथ है, वैसे जू लोगों का टोरा नाम का ग्रंथ है। और वो सिनेगॉग मतलब हमारा मंदिर, क्रिश्चियन लोगों का चर्च, मुसलमानों का मस्जिद, सिखों का गुरुद्वारा, तो जो लोगों का होता है सिनेगॉग, तो वहां जाके वो अपने भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो इसी जू लोगों में से जीसस क्राइस्ट का उदय हुआ था, और जो जिन्होंने जीसस क्राइस्ट को फॉलो किया उनको पूरे क्रिस्ती लोग के रूप में माना गया, लेकिन तब केवल उसके पहले केवल जू लोग, जू ही लोग थे। फिर उन्होंने बहुत लंबी कहानी है, तो ऐसे जगह पर शिकागो में महाराज जी का जन्म हुआ, उनका नाम था रिचर्ड स्लाविन, उनके पिताजी का नाम था मिस्टर स्लाविन, और ये जो परिवार था ये बहुत ही धार्मिक और बहुत ही सादगी वाला, बहुत ही सिंपल। जब उनका जन्म हुआ था तो कहते थे कि हमारे गांव में दूर दूर तक कहीं डिवोर्स का नाम नहीं था। अभी ज्यादा दूर की बात नहीं है ये, कभी अभी कितने साल हो गए, 60 साल पहले की बात है। तो समय पर दूर दूर गांव तक कोई डिवोर्स हुआ ऐसा हमने सुना नहीं था कभी। आज तो क्या अमेरिका में हर दूसरे घर में 3-3 डिवोर्स होते रहते। खाली पूछते हैं आपका कितना हो गया, मेरा 3 हो गया, आपका कितना हो गया, मेरा पहला ही है, अभी मैं नया नया इस खेल में नया खिलाड़ी हूं। लेकिन उस समय पर कहते थे कि पति पत्नी बालक परिवार इसके अंदर इतनी श्रद्धा थी लोगों की। और वो कहते थे कि मेरी माँ जो थी वो दिन भर बच्चों के लिए खाना बनाती थी और हर रोज उनके लिए नया नया फीस्ट बनाती थी। मेजबानी बोलते ना, पार्टी मतलब, जैसे हर रोज नया नया आइटम बनाती थी, 5-5, 6-6 आइटम हर शाम को बनाती थी। दिन भर उसमें लगी रहती थी बालकों को देखने में, उनको संभालने में, प्रेम देने में। और ये करते करते उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे मूल्य जो है, मतलब वैल्यूज भगवान के विषय में, धर्म के विषय में, अपने बालकों में उन्होंने इसको हृदय में बसा पठाया। सब जीवन के मूल्य जो है, अच्छे अच्छे मूल्य जो है, सादगी, नम्रता, आदर, सहनशीलता, विद्या प्राप्त करना, बड़ों का आदर करना, अच्छे अच्छे गुणों को उन्होंने हृदय में स्थापित कर दिया बच्चों के। लेकिन रिचर्ड जो थे वो बचपन से ही कुछ अलग टाइप के व्यक्ति थे, उनको किसी भी जगह पर इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन बचपन में वो कुश्ती खेलने में बहुत एक्सपर्ट थे। अपने स्कूल में और कॉलेज में बहुत जबरदस्त कुश्ती में उन्होंने यश प्राप्त किया था। तो उनको एक अच्छे कुश्ती के पढ़ाई का अध्यापक, कुश्ती के अध्यापक, उन्होंने उनको ले लिया अपने अंडर कि मैं आपको गोल्ड मेडल दिलाने में प्रयास करूंगा। तो वो सेमीफाइनल तक जीत गए पूरे टूर्नामेंट के अंदर। जब फाइनल में गए तो रिचर्ड का कंधा जो है वो फ्रैक्चर हो गया और उनको रिटायर होना पड़ा। तब वो लिखते हैं अपने इस ग्रंथ में कि मैं समझ गया कि भगवान की इच्छा नहीं थी कि मैं इस करियर में आगे बढ़ूं, इसलिए मेरा जो दुबे अहंकार होने वाला था गोल्ड मेडल प्राप्त करने के बाद में, भगवान ने वही कंधा तोड़कर मेरा अहंकार भी तोड़ दिया। उसी तरह से उनके बचपन की बहुत सुंदर सुंदर कहानी है, लेकिन आपको एक घंटे में संक्षेप में बताऊंगा उनका जीवन का सार क्या है। एक बार वो अमेरिका में ऐसा कल्चर है कि काम करते करते, सॉरी पढ़ते पढ़ते बच्चे काम भी करते हैं। 2 घंटा किधर पंप पे काम कर लिया, पेट्रोल पंप पे, किधर फूड आउटलेट में काम कर लिया, किधर कोई पिज्जा बेच लिया, कोई ब्रेड बेच दिया, ऐसे कोई कैंटीन में 2 घंटे का वेटर का काम कर दिया, $5 ले लिया, घर पे चले गए। ऐसे करके गरीब लोग जो है वो अपनी पढ़ाई भी करते थे, कुछ धन भी कमाते थे पॉकेट मनी के रूप में। तो ऐसे ऐसे एक बार रिचर्ड स्लाविन जो हमारे गुरुदेव हैं, अपने माता पिता और भाई बहन के साथ में एक रेस्टोरेंट में गए, फैमिली के साथ में। तो रेस्टोरेंट में टेबल पे बैठे तो अचानक उन्होंने कुछ ऑर्डर दिया, अचानक रिचर्ड जो है वो होटल छोड़ के बाहर भाग गए और नीचे बैठ कर रो रहे थे। तो समझ में नहीं आया पिताजी को क्यों रो रहे, रेस्टोरेंट में आए खाना खाने के लिए, क्या हो गया तुमने? तो बोलते कि ये रेस्टोरेंट के अंदर मेरे क्लासमेट जो है, मेरा क्लासमेट, वो वेटर बन के अभी सेवा कर रहे हैं, तो मुझे वो सहन नहीं हो रहा है कि मैं उसके हाथ से सेवा ले लूं, अपनी मालिक मतलब एक कस्टमर की तरह वो मेरे आगे सेवा करेगा, मुझे प्लेट देगा और खाना खिलाएगा, मुझे सहन नहीं हो रहा है, इसलिए वो भाग्य वहां से। घर पे जब खाना खाते थे तो कभी टेबल क्रॉस पे बैठते नहीं थे, जमीन पे बैठते थे। पर रिचर्ड तुम पागल हो गए क्या, हमारे संस्कृति में सब लोग टेबल कुर्सी पे बैठ के खाते हैं, ये हमेशा नीचे बैठ के खाना खाते। उनको अजीब लगता था टेबल कुर्सी पर बैठ के खाने के लिए। फिर मार्टिन लूथर किंग, आपने नाम सुना होगा मार्टिन लूथर किंग, ये जन्म से निग्रो थे, काले रंग के थे। और आपको पता नहीं होगा हमारे यहां पर जैसे धर्म का युद्ध होता है ना, लोगों का धर्म के नाम पे लोग कितना लड़ते हैं, जान भी ले लेते हैं, मार देते हैं, दंगा फसाद कर देते हैं, वहां पर काले घोरे में ऐसा प्रकार का भेद होता है। काले जहां बैठते हैं वहां गोरे बैठते नहीं, गोरे जहां बैठते हैं काले नहीं बैठते हैं। उनकी बस अलग होती है, उनकी ट्रेन अलग होती है, उनकी सीट अलग होती है, बहुत जबरदस्त भेदभाव होता है। और वो काले गोरे इतना लोगों को मतलब इतना घृणा करते हैं, इतना हेट करते हैं लोगों को। तो मार्टिन लूथर किंग था वो काले लोगों का नेता था, लेकिन वो भेद करने वाला नेता नहीं था। उसकी एक ही इच्छा थी कि जीवन में और विश्व में ये सब भेद खत्म हो जाए और इंसान इंसान के रूप में रहे। तो मार्टिन लूथर किंग के विचार से रिचर्ड के मन पर बहुत प्रभाव हो गया। तो गोरे रंग के होते हुए भी ये एक बार काले लोगों के जुलूस में चले गए इसी विचार से कि भेद नहीं होना चाहिए। बोले कि मुझे अपना प्रणाम प्रमाण दिखाना चाहिए, इसलिए खुद वो काले लोगों के साथ में हाथ में हाथ लेके जुलूस में चले। उन पर बहुत टिका हुई, उन पर बहुत लांछन लगे उसकी वजह से कि ये क्यों नाटक करने हमारे बीच में आ रहे हैं, ऐसे काले लोग बोल रहे हैं। बुरे लोग बोल रहे हैं कि अरे हमारे दुश्मनों के बीच में क्यों चल रहा है। दोनों तरफ से इनको गाली पड़ी, लेकिन उनकी एक टीचर थी जो बहुत मानती थी रिचर्ड को, रिचर्ड भी उनको बहुत मानते थे। उन्होंने समझाया था, ये बीज बोया था हृदय में उनके कि कोई इंसान के बीच में भेद नहीं होना चाहिए, गरीब के बीच में और अमीर के बीच में नहीं होना चाहिए, पढ़ा लिखा और अनपढ़ के बीच में नहीं होना चाहिए। हाँ, अच्छे दिखने वाला सुंदर और अच्छा नहीं दिखने वाला कुरूप व्यक्ति जो है उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए, जाति में भेद नहीं होना चाहिए। ये बहुत मंदिर की पूजा करने वाला पुजारी है, ब्राह्मण है और ये हंगी है, या कोई व्यापार करने वाला शेतकरी है, ऐसा कोई भेद नहीं होना चाहिए। क्योंकि सब धर्मों में भगवान एक ही बात बताते हैं, क्या बताते हैं कि सभी जीव जो है मेरे बालक हैं। हाँ, वो ऐसा नहीं कहते कि खाली मानव मेरे बालक है, वो कहते हैं सभी जीव, मतलब पंछी, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, शेर, पेड़, मछली, जितने भी जीव हैं वो सब भगवान के अंश हैं। सब धर्म यही बताते हैं, लेकिन आदमी उसका बराबर उल्टा काम करता है और भेदभाव में जीवन बिताता है। अब हम लोग जब परदेश आते हैं ना, तो एक जगह पर इंडियन लोग रहते हैं, एक जगह बांग्लादेश लोग रहते हैं, एक जगह पाकिस्तान लोग रहते हैं, एक जगह उधर के अमेरिकन या ब्रिटिश लोग रहते हैं, लेकिन साथ में नहीं रहते हैं। मतलब ये अलग है, वो अलग है, ये अलग है, हम लोग नहीं रह सकते उनके साथ में। कितना भेदभाव करते हैं, हर चीज़ का भेदभाव करते हैं, धन के बारे में भेदभाव करते हैं, हाँ पोजिशन के ऊपर भेदभाव करते हैं, नहीं नहीं हम तो ऑफिसर है, वो तो क्लास फोर एम्प्लॉई, ऐसा सब बात करते हैं। लेकिन समानता होना बहुत जरूरी है। ये बीज जो बीज है ये मार्टिन लूथर किंग और उनके टीचर के द्वारा महाराज के हृदय में बस गया। जब वो बड़े बने, थोड़े से 15 साल के हो गए, जूनियर कॉलेज में गए, जैसे हमारा था ना एसएससी पास करके कॉलेज में चले गए, तो इनका एकदम जीवन में आगे बढ़ने का इंटरेस्ट खत्म हो गया। हमेशा वो भगवान की तरफ से उनका हृदय आकर्षित होता था। बचपन में उनका, मैं उनके घर पे गया हूँ जहाँ पर महाराज का जन्म हुआ था, उनके घर के पास एक स्मशान है, उसको क्या बोलते हैं सेमेट्री बोलते हैं, जहाँ पर वो दफनाते हैं ना, उसके ऊपर एक क्रॉस लगाते हैं, फूल चढ़ाते हैं और बहुत अच्छा अच्छा गार्डन बनाते हैं। तो ये रिचर्ड जो है वो बचपन में हमेशा उस स्मशान में जाके बैठते थे, बोले कोई आत्मा आएगा ऊपर से तो मैं देखूंगा उसको। लोग बोलते हैं ना कि इधर बहुत आत्मा घूमती रहती है, सोल रूह जो है वो घूमती रहती है, तो बहुत समय जो अकेले में जाके बैठ के ऊपर गुजारते थे और सोचते थे क्या होता होगा उनका, वो कहाँ गए होंगे, जन्म के बाद मृत्यु होने के बाद में वो कहाँ गए होंगे, वापस आएंगे क्या, नहीं आएंगे क्या, सब बचपन में होता ना विचार मन में आता था ना, बिना डरे अकेले बैठती थी वहां पर। मैं भी उस जगह पर जाके देख के आया, वो सुंदर जगह है वैसे, लेकिन फिर भी स्मशान तो स्मशान होता है ना, बहुत फुटबॉल लगाते हैं और दीपक लगाते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं, कुछ मैसेज देखते हैं उधर गए आदमी के लिए, भावना अच्छी है। तो इनको भगवान, जीवन, मृत्यु, उसके बाद क्या होता है, इसके बाद बहुत कुतूहल था मन में बचपन से। तो अचानक जब वो जवान हो गए, कॉलेज में गए, तो उनके मित्र थे गैरी, और दो तीन मित्र थे, लेकिन गैरी बहुत एकदम फास्ट फ्रेंड थे, तो उन्होंने सोचा कि हम इंग्लैंड जाएंगे और भगवान की खोज करेंगे, चलो अभी कोई ऐसा यहाँ से दादर जाने का काम नहीं था, वो चलो दादर जाके आएंगे, सब्जी खरीद के आएंगे, ऐसा नहीं था वो, इंग्लैंड किधर, अमेरिका किधर, शिकागो किधर, कम से कम आज की तारीख में 10 घंटे का रास्ता है हवाई जहाज से, 10 से 12 घंटे का, मतलब यहाँ से रशिया जाने का भी रशिया भी पास में है, बहुत दूर है, देश छोड़ के जाना पड़ता है वीजा निकल के, जेब में पैसा नहीं कुछ नहीं। गैरी बोला मेरे पास थोड़ा पैसा है, मैं आपका भी टिकट निकालूंगा, आप चलो। तो चले गए दोनों, घर पे गए, मैं जा रहा हूँ, बोले छुट्टी है अभी, कॉलेज शुरू होने वाला है, कॉलेज शुरू होगा तो पढ़ाई करनी होगी, नहीं मैं लौट के आऊंगा, डोंट वरी, मैं जरा दोस्त के साथ घूम के आता हूँ, ठीक है बोलो जाओ। इंग्लैंड में पहुंचे, तो इंग्लैंड में पहुंचते ही एक तीसरा मित्र था उनका, जिनके पास पैसे भी थे और उनका स्पॉन्सरशिप करने को तैयार था, वो उसका पूरा पॉकेट खत्म हो गया, किसी ने पॉकेट मार लिया उसका, अचानक उसके पास पैसे थे एकदम जीरो बन गया, उसको हर टिकट बचा अपना वापस लौटने का। तो पहुंचते ही ये तीनों लोग साथ में गए थे, तो एक का पॉकेट मार लिया गया, तो बोला कि मैं भी वापस नहीं आ रहा हूँ, मैं घर पर घर जा रहा हूँ, टिकट लेके हमने, मेरे को भी इंटरेस्ट नहीं इसके आगे। तो ये लोग दोनों के पास बहुत बड़ा निश्चय था कि हमको जाना ही है, मतलब पैसे नहीं, देखा जाएगा, किसी को पूछ पूछ के जाएंगे। तो वो चला गया और दोनों आगे बढ़ने लगे। तो बड़ी लंबी कहानी है उसको, तो आपको 12-15 घंटे लगेंगे पढ़ने के लिए, लेकिन संक्षेप में कहा जाए तो दोनों एक जगह पहुंचे आगे जाकर। कुछ पैसे वैसे कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत पैसा था तो कभी कुछ ट्रक में चढ़ लिया, कभी कुछ बैलगाड़ी में बैठ लिए, कभी बोट में बैठ गए, ऐसे कभी फ्री में बैठ गए, कभी मांग के बैठ गए, ऐसे कोई खाना खिलाया, ऐसे कोई रह गए, किसी के शेड में रह गए, किसी के पास में रह गए, ऐसे करते करते कुछ आगे पहुंचे। तो उस जगह पर ये दोनों ध्यान करते थे बैठ के, उनको बचपन में कुछ प्रार्थना करने का तरीका सिखाया था माता पिता ने, तो बैठ के वो ऐसे मेडिटेट करते थे और मन में आंख बंद करके बहुत घंटे घंटे प्रार्थना करते थे। और अभी यही काम था ना, दिन भर प्रार्थना ही करने का था, तो उनको आदत भी अच्छी लग गई थी, घंटे घंटे बैठ सकते थे वो अकेले में, एकांत में भगवान से जोड़ने का प्रयास करते थे अपने आप को। तो दोनों जगह, दोनों व्यक्ति दो जगह बैठकर अपना ध्यान लगा रहे। तो अचानक रिचर्ड को एकदम मन में आवाज आती है, इंडिया जाओ, भारत चले जाओ, ऐसे उनको आवाज आती मन से अंदर से। तो उनको एकदम सा झटका लगता है, एकदम तो बार बार ध्यान करते तो पर बार वही आवाज मन में आती, तो एकदम वो एक्साइट हो जाते हैं, तो आकाश की तरफ देखते हैं और भाग भाग के अपने मित्र की ओर आते हैं शाम को जहां पर सोने का जगह होता है। तो आज मुझे अंदर से आवाज आई, हो सकता है भगवान की आवाज होगी कि भारत चले जाओ, भारत चले जाओ। तो गैरी कहते हैं कि मुझे भी मन में आवाज आई, हो सकता है वो भगवान की आवाज होगी। तो रिचर्ड ने पूछा क्या आपको बोला, उनको उम्मीद था कि उनको भी शायद यही बोला होगा भारत चले जाओ। तो उनके मन में आया, मेरे मन में ऐसे आवाज आई कि इसराइल चले जाओ। अब इसराइल में क्या है, इसराइल में जेरूसलम है और जेरूसलम में तो जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, वो बहुत पवित्र स्थान है, बहुत लंबी कहानी है उसकी, कैसे भगवान के पुत्र जीसस क्राइस्ट ने वहां जन्म हुआ था। तो दोनों बड़े दुखी हो गए, अरे भगवान ने दोनों को अलग अलग गाइडेंस दिया है। तो बड़े दुखी हो गए क्योंकि बड़े पुराने मित्र थे वो, लेकिन रिचर्ड अपने मन में निश्चय कर चुके थे कि मुझे भारत जाना है, और गैरी भी निश्चय कर चुके थे कि मुझे इसराइल जाना है, क्योंकि दोनों को हृदय की जो आवाज है उसका आदेश पालन करने की बहुत इच्छा थी। हृदय से जो आवाज आ रही है ठाकुर जी की आवाज आ रही है, भगवान की आवाज आ रही है। तो बड़े भारी हृदय से उन्होंने एक दूसरे का विदा लिया और दोनों दो दिशा में चले गए। और फिर लंबी कहानी है भाव, महाराज हमारे रिचर्ड जो है एकदम बालक थे, 17-18 साल के, कभी बैलगाड़ी में, कभी ऊंट के पैर पीठ पर, कभी ट्रक में, कभी बोट में, कभी नदी पार करके, कभी तालाब पार करके, ऐसे करते 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 अफगानिस्तान में पहुंचे। उधर उन्होंने बहुत भयंकर भयंकर उनको अनुभव हो गए, कहीं लगा जो ड्रग्स ले रहे हैं, कहीं हशीश पी रहे हैं, कभी अफीम पी रहे हैं, कोई गांजा पी रहे हैं, अलग अलग प्रकार, कोई चोर है, कोई डकैती है, कोई ड्रग ट्रैफिक करने वाले हैं, सब जगह उनको धीरे 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 आगे आगे बढ़े वो। कुछ कुछ देश में केवल यही व्यवहार था, खेती करने का मतलब कि अफीम पकाने का और अफीम बेचने का दुनिया भर में, ऐसे भयंकर गुंडे लोग थे सब जगह में। उनको पार करते 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 अफगानिस्तान पहुंचे, अफगानिस्तान में उनको बहुत भयंकर अनुभव आया, वो आप पढ़िए किताब में, यहां पर नहीं बोल सकता हूं। अफगानिस्तान में उनको एकदम जीवन का भयंकर अनुभव आया, उन्होंने वर्णन किया है, काबुल कंदाहार आगे जगह है वहां। उसके बाद में फिर वो पाकिस्तान में आए, उनको कम से कम 6 महीना लगे। जब घर से निकले थे तो जैसे आपको यहां से चर्चगेट जाना है, आपके पास कोई पैसा नहीं है, तो किसी को ऐसा ऐसा करेंगे ना आप, तो कोई रिक्शा में लेट जाएगा, बोला मैं गोरेगांव उतर रहा हूँ, तो गोरेगांव उतर जाएंगे, बाद में ऐसा वापस करेंगे तो कोई कार में लेके आपको अंधेरे छोड़ देगा, फिर आप वापस ऐसा करेंगे, फिर बैलगाड़ी आपको ले लेंगे, बैलगाड़ी बैठ के धीरे धीरे आप जाएंगे कार तक, फिर कोई कार आएगी आपको लेके जाएगी बांद्रा तक, ऐसे करते करते वो इंग्लैंड, अमेरिका से इंग्लैंड से निकले थे, तो सारे देश को पार करते करते तुर्कस्तान, ऐसे बड़े बड़े देश को पार करते करते फिर अफगानिस्तान करके फिर पाकिस्तान पहुंचे। अलग अलग लोगों से उनकी मुलाकात हुई, कई जगह बहुत प्रेम मिला उनको लोगों के साथ में, बहुत उनको सहायता मिली, और कई जगह बहुत भयंकर अनुभव आए, लोग उनको मारना चाहते थे, अरेस्ट करना चाहते थे, उनका गलत इस्तेमाल करना चाहते थे, उनको ड्रग बेचना चाहते थे, कोई ड्रग उनको देना चाहते थे जबरदस्ती, कोई जबरदस्ती उनको शराब पिलाना चाहते थे, ऐसे बहुत बहुत भयंकर अनुभव उनको हुए। लेकिन सबसे पार करते करते हर समय हर संकट में हर जगह पर भगवान को, जो पता नहीं भगवान कौन है, लेकिन उनको पुकारते 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 बचते 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 वो आगे चले गए। अफगानिस्तान में जो उनको भयंकर अनुभव आया, तो उन्होंने मन में निश्चय कर लिया कि मैं जीवन भर अविवाहित रहूंगा और शादी नहीं करूंगा, ब्रह्मचारी रहूंगा। ऐसे मन में ही निश्चय कर लिया कि भगवान की ऐसी इच्छा है, इस प्रसंग से मैं देख सकता हूं कि मुझे यही करना चाहिए। पाकिस्तान में जब आए तो आप सोच सकते हैं ना कितना महीना उन्होंने मेहनत किया था, माँ बाप से दूर छोड़कर भगवान के खोज में कोई साधक चल रहा है, भगवान को ढूंढ रहा है, और भगवान उसको हर समय पूछते हैं भगवान पता नहीं आज में कहाँ ले जाएंगे आप, लेकिन मुझे पूर्व की ओर जाना है, भारत की ओर जाना है। तो धीरे 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 करके आगे आगे बढ़ते हुए हर समय हर कदम पर भगवान को प्रार्थना करते हुए उस घटना का अर्थ पूछते हुए कि क्या अर्थ है भगवान, आप क्या चाहते हो मुझसे, गाइड करो मुझे, अंदर से शक्ति दो, मार्ग दिखा दो, आपकी ओर मुझे बढ़ना है, ऐसे पुकार करते करते पाकिस्तान पहुंचे। हम सब लोगों को जीवन में याद रखना चाहिए कि जब तक हमारे हृदय में कोई तीव्र इच्छा नहीं है तब तक हमको वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती। जैसे कि आज जो पंत प्रधान बना हुआ ना प्रधानमंत्री, वो कभी उसने मन में तीव्र इच्छा की होगी कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है, बनना है, तभी जाकर वो आप उस पद पर आप उसको बैठे हुए देखेंगे। जैसे गोल्ड मेडल मिलता है तो कभी तो तमन्ना की होगी मुझे गोल्ड मेडल चाहिए, किसी भी कीमत पर मैं मेहनत करूंगा, प्रयास करूंगा, कष्ट करूंगा, इच्छा होना जरूरी है। वैसे ही भगवान की आपको प्राप्ति करना जरूरी है, चाहिए तो मन में इच्छा होनी चाहिए। भगवान को ऐसा फ्री में मिलने वाली वस्तु नहीं, आप चल रहे थे भगवान रास्ते में मिल गए और आगे चले गए साथ में, उनके हाथ में आप रख रहे, ऐसा नहीं होता है, बहुत प्रयास करना पड़ता है। बहुत साधुओं ने भारत में, इतने साधु हैं जिन्होंने भगवान की प्राप्ति करने के लिए क्या क्या नहीं किया, सब कुछ, घरदार, पैसा, धन दौलत, परिवार, ज्ञान, अपना पोजीशन, अपना अधिकार, सब कुछ छोड़ के वो भगवान के पीछे भाग गए, भगवान को प्राप्त करने के लिए सब कुछ त्याग कर दिया उन्होंने। हमारे जो गोस्वामी हैं, त्यक्त्वा तूर्णम अशेष मंडलमति श्रेणीम तथा तुच्छवत, सारे धन दौलत अधिकार जितनी बड़ी बड़ी वस्तुएं हैं उनको तुच्छ बांधकर उन्होंने त्याग कर दिया। क्यों? प्रिय भगवान के चरणों में शरण प्राप्त करने के लिए, प्रिय भगवान को मिलने के लिए, उनके चरणों में अपने जीवन को समर्पित करने के लिए। साधु लोग ऐसे होते हैं वो भगवान के लिए कुछ भी कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त करने के लिए सब कुछ छोड़ सकते हैं, अपना अहंकार, अपना पद, अपना पोजीशन सब छोड़ सकते हैं। अभी आप सोच सकते हैं इतना महीना मेहनत करने के बाद में एक जवान लड़का थका हुआ, जेब में पैसा नहीं, उसके खाने के लिए कोई साधन नहीं है, इतनी भयंकर अवस्था हुई, आप सोच सकते हैं? हमारे पास अभी घर है, पैसा है, शाम को कहाँ खाने वाले हैं पता है, कल सुबह कहाँ रोटी खाएंगे वो भी पता है हमको, हाँ कहाँ सोएंगे वो पता है, घर में पंखा है, एसी है, गाड़ी है, सब पता है आपको, एवरीथिंग यू नो, सब आपको पता है क्या होने वाला है, किसी के उन्हें टेंशन नहीं है कि कल रात को मेरे को खाना कहाँ मिलेगा, आज तो दोपहर को खा लिया लेकिन शाम को पता नहीं कहाँ खाऊंगा, ऐसा नहीं है हमारा किसी का। उनकी ऐसी अवस्था थी, अपने देश से कम 10,000 मील दूर थे वो, और पाकिस्तान में जब बॉर्डर पे आए, उसका नाम वाघा बॉर्डर है, वाघा बॉर्डर जो इंडिया में प्रवेश करने के लिए, वहां पर इंडियन आर्मी के लोग, अधिकारी लोग बैठे हुए थे, उसमें एक औरत थी, उनके पास उन्होंने अपना पासपोर्ट दिखाया वीजा वाला, उन्होंने अपना वीजा बनवा लिया था भारत के लिए, उसने देखा उसका, कितने पैसे आपके पास, तो उनके पास में कुछ $5 थे शायद, बहुत कम पैसे थे, उनके एग्जैक्टली याद नहीं कितने पैसे थे, लेकिन उसने कहा कि कम से कम $200 होना जरूरी है तुम्हारे पास भारत में प्रवेश करने के लिए, क्योंकि हमारे भारत में बहुत भिखारी हैं, हमको एक और उसमें ऐड नहीं करना है। कितना कठोर वाक्य बोला उसने, क्योंकि ऐसे ही वो थे, लंबे बाल थे उनके, बहुत थके हुए थे, दाढ़ी बड़ी हुई थी, मैले कपड़े थे, कहाँ ट्रक में कहाँ बैठ के आते आ रहे थे, ऊपर से जेब में कुछ पैसा नहीं है, मतलब भारत में क्या सोचते हैं, जरूर भिखारी होगा, भारत में भीख मांगने के लिए अंदर प्रवेश करने का प्रयास करता होगा। उन्होंने कहा भारत में बहुत भिखारी है, हमको एक और नहीं चाहिए वहां पर, आप चले जाओ यहां से, ऐसा करके पासपोर्ट बंद कर दिया और जाओ, गेट आउट। बहुत पैर पड़े उनको, माता जी का बहुत पैर पड़े, प्लीज आपका देश में मुझे प्रवेश करने दो, मुझे आपके देश के बारे में बहुत प्रेम है, आपके देश में भगवान की प्राप्ति होती है, मुझे आपके भारत माता के बारे में बहुत आदर है, कृपा करके आपके देश में मुझे एंट्री दो, मैं जरूर आपके देश के लिए कुछ ना कुछ करूंगा। बोले गेट आउट, पहले पैसे लेकर आओ, मैं तो यहां से चले जाओ, अपने देश चले जहां से आए हो। तो चले गए बेचारे रोते रोते, और एक पेड़ के नीचे बैठ गए, बहुत देर रोते रहे, उसकी ओर देखते रहे वहां बैठकर, वो भी उसको घूरती रही पर एकदम गुस्से से, दोबारा गए, दोबारा भगा दिया, बहुत देर तक होते, और वो उसने में शिफ्ट चेंज हो गया, दूसरा अधिकारी आ गया, उसका ड्यूटी खत्म हो गया, तो एक सिख आदमी आया, अधिकारी पुलिस के ड्रेस में, मतलब लश्कर जवान के ड्रेस में, तो ये औरत ने क्या किया, वो दूर बैठे हुए रिचर्ड को दिखाया, देखो वो लड़का है ना, इसको एंट्री देना नहीं है भारत के अंदर, दूर से दिखा दिया उसको, ये लड़का बहुत घंटे से यहाँ बैठा है, इसके पास बिल्कुल पैसे नहीं है, हमको बिल्कुल इसको देश में हमारे भेजना नहीं है, ऐसा करके इशारा करके दिखाया उसको, उसने भी देख लिया समझ लिया उसको, और वो बैठ गया ड्यूटी पर। वो फिर मिलिट्री के वैन में चली गई देखते घूरते हुए। फिर कुछ देर बाद रिचर्ड फिर आए वो सिख अधिकारी के पास, फिर अपना पासपोर्ट प्रस्तुत किया, जो कुछ बोला मिस्टर सर मुझे आपके देश में प्रवेश दीजिए। बोला तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? $5 है। बोले बिना $200 के आपको एंट्री नहीं मिलेगी, चले जाओ यहाँ से। क्योंकि पहले उसने बोलकर रखा ना, उससे आदमी परेशान कर रहे हैं सुबह से। तो तब जाकर घुटने टेक कर महाराज ने एकदम आंखों में आंसू लेकर गिड़गिड़ाया और प्रार्थना किया कि आपका देश महान है, आपके देश की भूमि, आपके देश की जो धूल है बहुत महान है, तो भगवान का निवास है, मैं आपको वादा करता हूं आप मुझे मेरी आपके देश में प्रवेश दीजिए, मैं एक दिन आपके देश के वासियों के लिए कुछ जरूर अच्छा काम करूंगा, आपको यकीन दिलाता हूं। मैं यहां भीख मांगने के लिए नहीं आ रहा हूं, भगवान की खोज में आया, मैं कुछ मकसद लेके आया हूं, उद्देश्य लेके आया हूं, उसके लिए मैंने कितने महीने तक ना घरदार के बिना चलते हुए घोड़े पे डंगा पे इसके उस पे गाड़ी पे नाव में ट्रक में बैठकर मैं यहां पर यात्रा करते आया हूं, आप मुझे कृपा करके प्रवेश मत नकारना। तो उस सिख आदमी ने रिचर्ड के आंख में देखा, बहुत देर तक देखता रहा, पता नहीं हृदय उसका पिघल गया होगा शायद उसकी भावनाओं को देखकर, बहुत देर आंखों में ताकता रहा उनके। फिर बैठ गया टेबल पे, पासपोर्ट खोला और स्टैंप लगा दिया, बोला यू कैन गो। उन्होंने कहा कि मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारी मन की इच्छा पूरी हो जाए, जिस उद्देश्य तुम लेकर भारत की ओर आए हो वो उद्देश्य तुम सफल हो जाओ। तो मुझे याद है एक प्रोग्राम था इधर नेहरू सेंटर में, नेहरू सेंटर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ आर्ट्स ऐसा कुछ है ना, NCPA, मुंबई का बहुत बड़ा हॉल है वो, और वहां पर एकदम बड़े बड़े धनी और प्रभावी व्यक्ति जो है नेता लोग और बिजनेसमैन लोग की कॉन्फ्रेंस होती है, वहां पर हमारे महाराज की एक बार प्रोग्राम रखा गया था, डॉक्टर्स है ना इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उसका प्रोग्राम था उसके अंदर। तो उस प्रोग्राम में महाराज ने यह कहानी बताई कि कैसे उसने भारत में प्रवेश किया। तो उसमें उन्होंने ये किताब में भी लिखा नहीं है, लेकिन उन्होंने वहां पर बताया था कथा में अपने, कि जैसे ही उनको उस सिख सरदार अधिकारी ने प्रवेश दिया तो अपना पासपोर्ट बैग में डालकर बैग अपने कंधे पर रखकर ऐसे भागे भारत के देश के अंदर। क्योंकि तो ना बॉर्डर में ऐसा होता है कि कई मील तक कुछ नहीं होता है, खाली बॉर्डर ही होती है, मतलब कोई घर भी कोई होता नहीं है, उसको कहते हैं नो मैंस लैंड, मतलब निर्जन बस्ती होती है, निर्जन मतलब कोई होता नहीं वहां पर, खाली जमीन होती है। तो उसके अंदर से वो भाग के ठंड के अंदर, आप जानते हैं पश्चिम मतलब उत्तर दिशा में कितनी ठंड होती है, ऐसे भागे बहुत देर तक भागे अंधेरे में, और उसके बाद में जमीन पर ऐसे अपने आप लेट गए छाती पर, और ऐसे जैसे कि भारत माता की भूमि को गले लगा लें। तो ये प्रोग्राम खत्म हो गया, कथा भी महाराज ने बताई, तो कुछ लोग उनको महाराज को जाके मिले, महाराज आपने ये कथा बनाई ऐसे कि लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, ऐसा कुछ बताया कि आप भारत पर कितना प्रेम करते हैं, ये दिखाने के लिए कि हकीकत है ये? तो तब ये किताब छपी नहीं थी, लोगों को पता नहीं था क्या कहानी है उनकी। तो महाराज ने संक्षेप में 2 घंटा बैठकर सब कहानी बताई कि जब मैं भारत में प्रवेश करने का मुझे स्टैंप मिल गया तब मैं मेरे चांस को खोना नहीं चाहता था, कि पता नहीं इसका दिमाग बदल जाए और वापस वो कुछ हो जाए तो मुझे वापस किस लगा, तो तुरंत उनको भारत देश में प्रवेश करना था। और उन्होंने कहा कि जब मैं जमीन पे लेट गया तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि भारत माता ने मुझे अपने गोद में ले लिया, ऐसा अनुभव हुआ कि एक माता जब अपने बालक को गोद में लेती है, खोए हुए बालक को, तो बहुत दिन बाद घर पे आया है, हाँ वो हॉस्टल से हम लौट के आते ना, 5 साल परदेश में गए थे पढ़ने के लिए, कोई अलग राज्य में गए थे, 5 साल पढ़ाई करने के बाद कभी दर्शन नहीं किया माता जी का, और पहली बार जब घर पे आता तो कैसे माता उसको गोद में लेती है, ऐसे कुछ उनको अनुभव हुआ कि मेरा खोया हुआ जन्म जन्म का खोया हुआ बालक जो है आज वापस मेरे गोद में लौट के आया है, ऐसा उनको अनुभव हुआ भारत माता की तरफ से। बोले ये भूमि जिसमें लोग तपस्या करते हैं, योग करते हैं, साधना करते हैं, इसमें संत लोगों ने जन्म लिया, इसमें भगवान ने अवतार लिया है, कितनी पवित्र भूमि है, वो भूमि मुझे आज बालक की तरह अपने गोद में ले रही है। फिर वहां से वो ट्रेन में बैठे, और उनको भयंकर अनुभव आया ट्रेन में। ट्रेन में सब लोग खिड़की से घुसते थे आज तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन मैं बहुत पहले जब गया था ट्रेन से तो मुझे देखा था। थर्ड क्लास बोगी में क्या होता है, खिड़की के तार नहीं होते हैं, बीच में डंडियां नहीं होती, खिड़की पूरी खुली होती है और दरवाजे से खिड़की सब लोग ऐसे डाइव मारते हैं अंदर, और डाइव मारते हैं अंदर वो खींच लेते सब लोग और इंच इंच पे बैठते हैं, मतलब एक पैर पे, एक उंगली पे, दो उंगली पे, चार उंगली पे, लेकिन खड़े रहना है, बैठना है अंदर बस। इस तरह से उन्होंने यात्रा किया, वहां से दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचने के बाद में तो पढ़िए आप उसको, मैं अभी बता नहीं सकता आपको सब कहानी। तो एक ऐसा अनजान आदमी हाँ भटक रहा है, इधर उधर देख रहा है, पता नहीं कहाँ जाना है, भगवान को मिलना है, कैसे किस दिशा में जाना है पता नहीं है। तो किसी ने उनको भांग खिलाई, किसी ने उसको लाल मिर्च खिलाई, किसी ने उनको क्या क्या खिलाया पिलाया, पागलों की तरह रास्ते में जाते। अचानक आदमी एक आया और ऐसे भयंकर अवस्था में उस पर एक नाग डाल दिया, सांप बड़ा एकदम अजगर टाइप बड़ा, और वो सांप जो है उसको ऐसा मंत्र बोला, कुछ बोला, उसको इशारा किया, तो सांप ने उसको लपेट लिया कड़क एकदम, मतलब अपने जाल में इसको एकदम गांठ मार ली अपनी पूरी कड़क, और उसका मुंह जो उनके सामने था ऐसा जबा जिब्वा निकल रहा था बाहर उसके, कभी भी काट सकता है, इससे भयंकर अवस्था में थे। सब लोग हंस रहे, ताली बजा रहे हैं, अरे कोई फॉरेनर लंबे बाला जटाधारी लड़का जो है विदेश से आया हुआ है, आंखें लाल लाल हो रही है, उसको सांप ने पकड़ लिया है, सब तालियां बजा के हंस रहे हैं। और इनको इतना टेंशन हो गया था कि मैं क्या होगा अभी पता नहीं। तो किसी बुढ़े आदमी को दया आ गई उनके ऊपर, तो वो जो सांप वाला आदमी था वो बोल रहा था 50 रुपये 50 रुपीज 50 रुपीज, उनका 5 रुपये भी नहीं थे जेब में, तो उनको इंग्लिश नहीं आ रही थी, उसको हिंदी नहीं आ रहा था, इनको हिंदी नहीं आ रहा था, उनको इंग्लिश नहीं आ रहा था। तो वो क्राउड में से, तालियां पीटने वाले क्राउड में से एक बुढ़ा आदमी सामने, उसको दया आ गई इस लड़के के ऊपर, उन्होंने कहा कि कितना रुपये दूँ आपको, उसको छोड़ दो बेचारे को। तो 40-30 बहुत उसका घसाघिस हो गई बहुत देर तक, आप 10 रुपये में मान गया, वो 10 रुपये में ले लिया और कुछ वापस जाके मंत्र बोला तो सांप पूरा निकल के उसके हाथ में आया अपने आप, ऐसे जैसे कि आज्ञापाली आज्ञा पालन करने वाला होता ना सेवक, जो टाइट पकड़ के रखा था सांप, छोड़ दिया उसने और पूरा उस मालिक के हाथ में आया और कंधे में बैठ गया उसके, और इनको रिहा कर दिया। फिर हिमालय में गए, तो हिमालय में क्या हुआ, हिमालय में गुफा में रहते थे, उस गुफा में भयंकर ऐसे मकोड़े हुआ करते थे, मतलब मकड़ी बोलते ना, मकड़ी क्या बोलते हैं उसको, स्पाइडर, बहुत बड़ा, मतलब हमारे ऐसा नहीं छोटा सा नहीं, हम बोलते हैं वो अपने बदन पे आएगा ना तो नए कपड़े मिलेंगे ऐसे बोलते हैं, तो पता है ना आपको कोई कोड़ी कोड़ी मतलब कोई मकोड़ी कभी बाय मिस्टेक उसका अगर तकदीर उसका अच्छा नहीं अपने शरीर पे आ गया वो तो नए कपड़े मिलेंगे, आप चिंता मत करना, उसको घूमने दो, कितना देर घूमेगा नए ज्यादा कपड़े मिलेंगे। वैसे मकड़ी नहीं थी ये भयंकर मकड़ी, अगर कोई डस लिया तो पॉइजन से आदमी मर सकता है, ऐसे मकड़ियां उनके गुफा में थी, और बिच्छू भी थे। तो बड़े अच्छे अच्छे साधु थे वहां पर हिमालय के अंदर, वो साधु उनकी उनको मुलाकात हुई, एक साधु ऐसा था उसका नाम था कैलाश बाबा, और बाकी साधु बोलते थे कि ये 700 या 800 वर्ष की उम्र के हैं, लेकिन समझता नहीं था कितने साल के, एकदम प्रेमी थे, बहुत मिलनसार, बहुत उनका अच्छा स्वभाव था, अच्छे स्वभाव के थे, बहुत अच्छे बात करने वाले थे, और इनको बालक की तरह ट्रेनिंग देते थे। तो उन्होंने उनको सिखाया कि खूंखार जानवर भी होगा, विषैला सांप या बिच्छू भी होगा, फिर भी उसके अंदर भगवान को देखना चाहिए, और भगवान को देखने से वो अपना भाई बन जाता है, तो भाई की तरह कैसे रहना है उसके साथ में, मतलब नेचर के अंदर, कुदरत के अंदर, निसर्ग के अंदर, प्रकृति के अंदर कैसे सभी जीवों के साथ समन्वय रखते हुए अच्छी तरह से रहना है, ये उनको कैलाश बाबा ने सिखाया। फिर टाट बाबा मिले उनको, फिर बहुत सारे बड़े बड़े संत मिले उनको, योगी मिले, और सबके साथ में उन्होंने विरक्ति का अनुभव किया। एक बार गंगा जी किनारे बैठे थे उधर हिमालय के अंदर, तो एक साधु आया, तो वो जीन पैंट और टी शर्ट पहन के बैठे थे, वैसे ही आए थे ना वहां से, वो वैसे ही घूम रहे थे। तो एक साधु अचानक आया, एकदम बड़ा बूढ़ा उम्र का, वो कह रहे कि तुम बड़े दूर से आए हो, और मुझे पता चलता है आपको देखे कि आप बड़े खोज में आए हो भगवान के, तो ये लो, तो सफेद वस्त्र पहनो और ये जीन्स और ये सब निकाल दो और साधु की तरह रहो। तो उसी समय उन्होंने अपने कपड़े उतार के गंगा जी में फेंक दिए, और साधु ने उनको वो कोपिन पहनाया, वो धोती आधी धोती हाफ धोती पहनाई, बोले आज से आप इस तरह से रहो। तो उन्होंने कहा ये भगवान के भेजा हुआ मसीहा है, पता नहीं भगवान की मेरे बारे में क्या इच्छा है, इसलिए भगवान उसको भेज रहे हैं उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए कि मुझे क्या करना चाहिए और गुफा में कैसे रहना है और क्या खा के बहुत दिन तक जिंदा रहना है बिना किसी कष्ट के। हाँ, एक बार्ली की पाउडर होती है सूखी हुई, वो पानी में भिगा के गंगा जी के जल में मिलाकर उसको पियेंगे तो कई दिन तक हम लोग अच्छी तरह रह सकते हैं, ये धर्मशाला में उन्होंने सीखा। नागा बागा पास गए, पता है नागा बागा क्या होते हैं, वो नंगे घूमते हैं, हाँ वो हिमालय के अंदर रहते हैं और त्रिवेणी संगम में स्नान करने का समय आता है ना कुंभ मेला में, तो वहां से नदी में प्रवेश करते हैं और गायब हो जाते हैं और यहाँ इलाहाबाद में प्रकट हो जाते हैं। सच्ची घटना है, आपको पता नहीं, नागा बाबा कभी भी यात्रा करते नजर नहीं आते, ट्रेन से हवाई जहाज से रास्ते से कभी भी नहीं, उनका स्थान हिमालय में है और विदाउट फेल उन कुंभ कहीं भी होगा, नासिक में होगा या हरिद्वार में होगा, उज्जैन में होगा या इलाहाबाद में होगा, वहां वो प्रकट हो जाते हजारों की संख्या के अंदर और किसी अनजान समय पर नदी में प्रवेश करते हैं और वहां से गायब होकर तुरंत हिमालय में प्रकट हो जाते और बिल्कुल नंगा घूमते हैं, उनके हाथ में त्रिशूल उनका तलवार ऐसे भयंकर लोग होते हैं। नागाबाबा के पास मिले, वहां पर भी उन्होंने बहुत अच्छा शिक्षा प्राप्त किया। तो नागाबाबा बोल रहे थे अभी से अभी हमारा दीक्षा ले लो, नागाबाबा बन जाओ, बिकम नागा बाबा। तो इनके मन में उन्होंने कहा कि मुझे अब तक प्रेरणा नहीं हो रही है कि मुझे जो चाहिए वो मिल रहा है कि आप मिलने वाला है, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है, इसलिए बिना हृदय को प्रेरणा होते हुए मैं कुछ भी स्वीकार नहीं कर सकता हूं। बड़े नम्रता से उन्होंने बताया, क्योंकि नागा बाबा किसी को ऐसे बोलते नहीं है दीक्षा लो करके, इनको देख के बोल रहे दीक्षा लो, तो सब नागा बाबा जो थे उनके अनुयायी वो भी एकदम आश्चर्य हो रहे, बाबा हमारे किसी को बोल रहे ले लो, सबको लग रहा था कि लेना चाहिए, अरे वो बोल रहे लेना चाहिए, सब उसको घूर रहे हैं उसको, ये क्यों हाँ नहीं बोल रहे हैं। आप कभी कभी लोग बोलते नहीं, लेकिन जिस तरह से घूरते हैं ना वो बिना बोले बहुत बात बोल लेते हैं, ऐसे हजारों आंखें ऊपर हैं, बाबा बोल रहे हैं धागा बाबा बनो। उन्होंने कहा कि मैं अभी तक तैयार नहीं हूं उसके लिए, इतना योग्य नहीं हूं मैं, तो बोला तुम जाओ ठीक है जा सकते हो। तो उसके बाद में वो दिल्ली आए, तो दिल्ली आए तो उन्होंने क्या देखा, दिल्ली हरिद्वार आए तो उन्होंने क्या देखा कि उधर एक बाबा बैठे ऐसे और बहुत लंबी लाइन लगे, लोग उनका आशीर्वाद ले रहे हैं लाइन से। हमारे भारत में ना इतनी विविधता है ना, किसी किधर भी जाओ आप उधर आपको हर हमेशा वैरायटी मिलेगी, हर चीज में भगवान को भी ढूंढने जाएंगे तो वैरायटी मिलेगी, किस किस रास्ते में आपको गुजरना है हर चीज में वैरायटी मिलेगी आपको। हाँ, अगर समुद्र में जाएंगे तो भी वैरायटी मिलेगी, पानी पूरी भेलपुरी शेवपुरी दहीपुरी, हाँ हर जगह की। भारत मतलब क्या है, विविधता पूर्ण, किधर भी जाओ किसी भी क्षेत्र में जाओ, फिल्म में जाओ बिजनेस में जाओ, हाँ खाने खाने के लिए जाओ किधर, इधर पंजाबी साउथ इंडियन मध्य प्रदेश और क्या काठियावाड़ी ढाबा और मारवाड़ी ढाबा और शुद्ध देसी घी का भोजन हर प्रकार का मिलेगा आपको भारत में। वैसे भगवान के वास्ते में भी बहुत वैरायटी मिलेगी आपको, जैसे बड़े लंबी दाढ़ी वाले ऐसे तपस्वी लगने वाले बाबा ऐसे बैठे हुए हैं थोड़ा ऊंचा ऊंचे जगह बैठे हुए हैं, तो महाराज जी अपने हमारे जो रिचर्ड हैं वहां से आते हैं, वो बाबा बोलते हैं आ जा बैठ बैठ जा, सब लोग अच्छा इतने लोग खड़े लाइन में आशीर्वाद लेने के लिए पैर छूने के लिए और ये बाबा जो है इनको बाजू में बिठा रहे हैं, अरे वाह क्या बड़ा आदमी है ये, मतलब ये बहुत संत होगा। तो लोग एक एक करके उनका आशीर्वाद लेके जा रहे हैं और बाबा क्या बोल रहे हैं, तुम्हारा नाम क्या है, मेरा नाम रिचर्ड है, तो यहाँ पर क्यों आए हो, तो यहाँ पर भगवान को खोजने के लिए आए, तो पागल हो तुम, इतना बड़ा तुम्हारा अच्छा देश अमेरिका, इतनी सुविधा है वहां पर, इतना आनंद लेने का साधन है, हाँ तुम मूर्ख आदमी हो, सब कुछ छोड़ के भगवान खोजने के लिए आए, और ये आदमी का लोग आदमी के लिए लोग चरण छूने के लिए लाइन लगा खड़े। तो महाराज सोच रहे थे, रिचर्ड सोच रहे, अरे देखो कैसे साधु लोग भोंदू लोग होते हैं, लोगों को लग रहा है कि ये भगवान का आदमी है, भगवान से मिला हुआ है, भगवान का साक्षात्कार किया होगा उसने, जो तपस्या की होगी इतना विरक्त होगा, इसके मन के अंदर भोग के लड्डू फूट रहे, बोले तुम कितने मूर्ख आदमी हो, इतना बड़ा तुम्हारा देश में इतना आनंद का साधन है उधर, सब कुछ छोड़ के तुम ये भारत में क्यों आए भिख मांगने के लिए। तो उनको लगा देखो साधु साधु में भी अच्छी तरह से फर्क करना चाहिए, जो लोगों की दाढ़ी बड़ी है आंख में बहुत तेज तेज दिखाई पड़ रहा है और बड़े कम से कम वस्त्र पहने हुए लंगोटी पहना हुआ है और बहुत दुबले हैं और बहुत आंखों में तेज है, तो सब लोग भगवान के व्यक्ति नहीं होते। हाँ, भगवान का व्यक्ति मतलब कोई दाढ़ी बढ़ने से भगवान की व्यक्ति नहीं होती, जैसे एक कथा में क्या हो रहा था, एक व्यक्ति बहुत रो रहा था, शुरू से कथा शुरू हुई तो रोना आरंभ किया उसने, रो रहा है रो रहा है रो रहा है रो रहा है। तो कथा वाले को लगा, अरे क्या भक्ति है, मैं कथा बोल रहा हूं, मुझे रोना नहीं आ रहा है, और वो इतना भक्ति है उसके सुनने में, उसको इतना आनंद आ रहा है, मतलब क्या भक्त होगा वो, मेरे प्रवचन में मुझे इतना प्रेरणा मिल रही है उसको देख के कि वो रो रहा है रो रहा है। तो उनको लगा कि मेरे प्रवचन के बाद उनको जरूर मिलना चाहिए। तो गया उनके पास, प्रवचन करने वाला व्यक्ति गया उनके पास, बोले बाबा आप रो रहे हो, क्या कारण है उसका, मतलब क्या बात पे आपको रोना है, मतलब ऐसा क्या प्रसंग था जिसमें आपके आंसू निकल गए। बोला ऐसा है कि 4 दिन के पहले मेरा बोकड़ का मृत्यु हो गया, मेरे घर में एक क्या बोलते हैं बोकड़ को, क्या बोलते हैं, हाँ बकरा होता है ना बकरा, उसको बोकड़ भी बोलते हैं, बोलते हैं उसकी भी आपकी जो दाढ़ी थी, आप जब कथा कर रहे थे आपको देखे मेरे को बोकड़ के याद आ रहे थे बार बार होगा, लोगों को क्या लग रहा है, अरे कितना भाव है इसके अंदर, भगवान की बात सुन के आंसू निकल रहे, प्रेम के आंसू निकल रहे, लेकिन उसको बकरे की याद आ रही है। इसलिए वो मराठी में कहते हैं जस दिस्त तस नस्त मनु जग फस्त। जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, और दुनिया ऐसे फंसती रहती है। तो ये साधुगिरी और बंधुगिरी इसको पहचानना बहुत जरूरी है। हा? और ये उन्होंने महाराज ने बहुत कुछ देखा। आखिर में दिल्ली में आए तो एक साधुओं का कॉन्फ्रेंस था उधर, उसमें सबसे बड़े बड़े जो आदरणीय सम्माननीय ऐसे संत थे ना, जिनको लोग यहां से ऐसे वंदन करके घर में अपने बॉम्बे में दिल्ली में आगरा में उनका फोटो रख के उनको पूछते हैं, फूल भी अर्पण करते थे, ऐसे लोग उस कॉन्फ्रेंस में इकट्ठा हो गए थे। और वो कॉन्फ्रेंस एक फॉरेनर आदमी ने, जो भी साधु था खुद भी तपस्या किया हुआ था, उसने ऑर्गेनाइज किया था। उसको खबर मिल गई थी कि 7 बजे के बाद में इस कॉन्फ्रेंस के ऊपर कुछ लोग आके बॉम्ब फेंकने वाले, इसलिए वो कैसे भी करके उसको 7 बजे के पहले खत्म करने के पीछे उसकी इच्छा थी। वो किसी को उसने बता नहीं था, डर पैदा होगा ना, डर जाएंगे, इसलिए वो उसका एक ही एम था कि 7 बजे के पहले ये कॉन्फ्रेंस जो है साधुओं का खत्म होना चाहिए। तो कुछ लोगों को बोलने को मिला उधर ना, सब लोगों से बोलने को मिला। और जैसे उसका एंड आया उसका कॉन्फ्रेंस का, तो साधु लोग बड़े परेशान हो गए कि हमको बोलने का मौका नहीं मिला, हमको बोलने का मौका नहीं दिया, हमको नहीं बुलाया, हमको स्टेज पे नहीं बुलाया। तो खत्म होने का टाइम जब आया ना 5 बजे का, तो सारे साधु जो सम्माननीय थे, जिसका लोग दंडवत करते हैं उनको, सब स्टेज पे भाग के आए और मारा मारी करने लगे, मुझे बोलने दो मुझे बोलने दो मुझे बोलने दो। तो रिचर्ड हमारे बैठ के देख रहे हैं, अरे मुझे लगा था कि यहां पर कितना बड़ा सत्संग होगा, इतने महामंडलेश्वर साधु महात्मा जो है वो घर छोड़ के धन छोड़ के जंगल में रहने वाले तपस्या करने वाले बड़े बड़े महात्मा यहाँ इकट्ठा हो गए, कितना रस बरसेगा यहाँ पर आज, कितने अमृत की धारा बहेगी, कितना भगवान का साक्षात्कार होगा। ये विचार से रिचर्ड यहाँ बैठे हुए और इनमें क्या देख रहे हैं, सब साधु जो है दाढ़ी वाले लंगोटी वाले सब झगड़ रहे हैं, मुझे बोलने दो मुझे बोलने दो। तो एक बाबा जो है बड़े विरक्त थे, वो बाहर आके बोले, बेटा निराश मत होना, साधु हर प्रकार के होते हैं, इनको देख के निराश मत होना, ये देख के समझना कि सच्चे साधु भी कहीं हैं, इनको देख के ऐसा मत समझना कि मैं क्या सोच के आया था और क्या इंडिया में क्या देख रहा हूं। अरे इतना झगड़ा किया मैंने यहां से वहां आने के लिए, और यहां पर देख रहा हूं कि साधु लोग मिलकर झगड़ा कर रहे हैं। आगे जाके क्या देखा, एक आदमी खड़ा ऐसा, उसके आंखों के अंदर लोखंड की सली पकड़ी उसने, समझो ऐसे लोखंड की सली है, ऐसे हाथ से पकड़े ना और हाथ से दीवार पे लगा के रखे और दीवार पे ऐसे लगा के रखिए, ठीक है कोई बात है ना। वो सली का एक एंड आंख में था, उसकी आंख पे कॉटन रखा था, कॉटन के ऊपर लोखंड की सली है, क्या बोलते हैं आयन रॉड, और वो दीवार पे रखे आंख के बल से वो उसको बेंड कर रहा है लोखंड की सली को, और जनता देख रही है, तालियां बजा रही है। और खेल खत्म होने के बाद में उसने दंड बेंड की वो लोखंड की सली है उसको उतार के रखा, थोड़ा आंख को ऐसा पोंछ लिया और एक बॉक्स लेके गया सबके सामने, सबने उसको पैसे दिए। तो महाराज को आश्चर्य हो गया, अरे ये क्या चीज है, मतलब कोई सिद्ध योगी होगा ना ये, कोई सिद्ध आंख के बल से अगर लोखंड के सली को बेंड कर रहा है, मतलब कोई सिद्ध योगी होगा, लेकिन दे रहे पैसे क्यों ले रहे लोगों से ले रहे, वो भी गृहस्थों से, ये लग रहा है विरक्त है ब्रह्मचारी लगता है, लेकिन सब माता पुरुष सब बच्चे खड़े हुए हैं सबको पैसे ले रहा है। तो महाराज जी आके मिले रिचर्ड, बोले तुम कौन हो और ये ऐसा क्यों कर रहे हो। तो बोलता है कि मैं हिमालय में साधु बन के गया था, कुछ सीखने के लिए गया था, लेकिन वहां पर मैं फेल हो गया, मतलब मैं आगे नहीं बढ़ सका, लेकिन तब तक मैंने कुछ विद्या सीख लिया था, अब मुझे ना दिल्ली जाके शादी करना है तो मैं फंड इकट्ठा कर रहा हूँ। बोले वाह, ये भी अजीब साधु है। हाँ, जो हिमालय में जाके विरक्त बन के कुछ सीख लिया उसने, अभी वो धन कमाने के लिए और आगे जाके पत्नी के साथ में विवाह करने के लिए वो फंड इकट्ठा कर रहा है। कितनी गलत चीज है ना ये। हमको क्या सिखाती है कि जहां चमत्कार दिखाई पड़ता है वहां नमस्कार मत करो। हाँ, हर चमत्कार जो है भगवान का नहीं होता है, बहुत जादू होते हैं दुनिया के अंदर, बहुत। कान में से भी 2 रुपया निकालते हैं, 1 रुपया निकाल देते हैं, अग्नि का ज्योत भी निकाल लेते हैं। हाँ, प्रभुपाद के सामने भी ऐसे लोग आए थे, एक जादूगर आया था और प्रभुपाद जी बैठे थे और वो सब भक्तों के सामने बैठ के जादू करने लगा। प्रभुपाद को बोला, प्रभुपाद हाथ ऊपर करो, तो मुट्ठी बंद करो, मुट्ठी खोलो, तो प्रभुपाद की मुट्ठी में पैसे आ गए। अरे, फिर बोला आंख बंद करो, तो कुछ और जादू किया, फिर कान में से कुछ रुपये निकाले, हाथ में से कुछ रुपये निकाले, और बहुत भक्त लोग एकदम प्रभावित हो गए। अरे वाह, क्या बात है, प्रभुपाद जी के कान से पैसे निकालते हैं। बहुत देर तक लोग एकदम, कुछ लोग अचंभित हो गए, कुछ लोग एकदम प्रभावित हो गए, कुछ लोग एकदम हंसने लगे जोक से, एकदम पूरा वातावरण बिगड़ गया, मतलब बदल गया वातावरण। बहुत देर में जादू करने के पश्चात सब गंभीर हो गए, प्रभुपाद जी भी गंभीर हो गए। तो प्रभुपाद जी बोला, बहुत अच्छा जादू किया आपने, मैं भी आपको एक सवाल पूछता हूं, क्या आप जन्म मृत्यु को नष्ट करने का जादू कर सकते हो? कैन यू स्टॉप दिस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ? लोग दुनिया में जन्म मृत्यु के मारे परेशान है, इस चक्र में फंसे हुए हैं, और तुमने पैसा निकाला, ये निकाला, वो निकाला, सब कुछ किया, क्या तुम जन्म मृत्यु को, मृत्यु से लोगों को बचाने का जादू कर सकते हो क्या? तो बोला, नहीं कर सकता। बोले, वो जादू मैं कर सकता हूं। साधु वो है जो लोगों को जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने का मार्ग दिखाता है। इस दुनिया में हवा में से सोना निकालना, विभूति निकालना, बीमार को ठीक करना, धन गरीब को अमीर बना देना, और जो कुरूप है सुंदर बना देना, उसको तो शादी नहीं हो रही शादी करना कर देना, जिसको बच्चा नहीं हो रहा है उसका बच्चा देना, ये कोई कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो मैनिपुलेशन है। हाँ, हमारे कमाल कृष्ण महाराज थे, वो कहते थे ये साधु आया, उसने सबके सामने खाली हाथ से हवा में हाथ घुमाया, मंत्र बोला और सोना ला के दिया, 100 ग्राम का चिप निकाल के दिया। लोग बोल रहे हैं कि वो भगवान है। बोले, भगवान है? सोने की खान में चले जाओ, एक चिप क्यों, बहुत सारा किलो सोना मिलेगा, तो सोने की खान भगवान है क्या? एक आदमी ने हवा से 100 ग्राम सोना निकाला तो आप उसको भगवान बोल रहे हो? अरे, उसकी जरूरत क्या है, सोने की खान में चले जाओ, आपको टन का टन गोल्ड मिलेगा, तो कैसे भगवान हो सकते? नहीं, वो हवा से विभूति निकालता है। अरे, स्मशान में जाओ, कुछ लकड़ी जला दो, बहुत विभूति मिलेगी आपको, तो वो कैसा भगवान हो गया? हमारे लोग सब ये मानते हैं, अरे बाबा बहुत, अरे पानी में फूंक मारा, मंत्र बोला तो बीमारी का ठीक हो गया, मेरा पूरा बीमार ठीक हो गया, तो हॉस्पिटल में चले जाओ, उधर भी दवा मिलती है, उधर भी बीमार ठीक हो जाती है, तो क्या हॉस्पिटल भगवान है क्या? नहीं, साधु को पहचानना बहुत जरूरी है। तो उस साधु की खोज में थे वो, जो मुझे भगवान से मिलाएगा। तो हिमालय में महाराज जी की और एक कथा ऐसी है कि वो ये सब दौरान, मतलब भारत में पहुंचने के बाद में कई महीने, 3-4 महीने वो हिमालय में रहे, बर्फ में, गुफा के अंदर, बिच्छू सांप और कोड़ी मकोड़े के बीच में रहे वो, और खाते थे क्या, दिन भर ध्यान करते थे उत्तरकाशी के अंदर। उत्तरकाशी नाम की जगह हिमालय के अंदर, हमने जाके देखी है वो जगह, और वो पत्थर भी देखा है जिस पत्थर पर बैठ के ध्यान करते थे, दिन भर ध्यान करते थे। और वहां पर एक गाजर वाला हुआ करता था, वो शाम को उनको एक गाजर भेंट करता था, और वो गाजर खाते थे और फिर दिन भर भजन करते थे। आप सोच सकते हैं कितनी तीव्र इच्छा होगी भगवान को प्राप्त करने के लिए। अरे, हम तो बोलेंगे क्या बढ़िया कथा है, हम भी अभी गाजर खाएंगे और हिमालय में जाके तपस्या करेंगे। एक दिन खाएंगे, दूसरा दिन बोलेंगे किधर नान परोठा मिल रहा है क्या, भूख लग रही है बहुत, कोई पनीर की सब्जी मिल रही है नॉर्थ में, कुछ होगा तो बताओ जरा, मिर्ची वर्ची का अचार होगा तो अच्छा रहेगा। कितने महीने तक उन्होंने केवल एक गाजर खाया, तब जाकर उनको गंगा जी के जल के प्रवाह के अंदर से आवाज आई, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद जी को मिलने की बहुत पहले की बात है, प्रभुपाद जी तो मिले भी नहीं थे, हरे कृष्ण संस्था के तो बाद में मुलाकात हुई। गंगा जी के प्रवाह की आवाज है ना, वो पानी खड़खड़ खड़खड़ बहता है ना, उसके अंदर से आवाज आई उनके कान में, क्लियर कट एकदम हरे कृष्ण महामंत्र। जैसे महाराज जी बोलते हैं कि गंगा जी मेरे प्रथम गुरु हैं, क्योंकि गंगा जी ने मुझे प्रथम हरे कृष्ण मंत्र का पहचान करा दिया और तब से वो हरे कृष्ण मंत्र जपने लगे। किसी की बोला दीक्षा ली थी, नहीं ली थी उन्होंने, किसी महात्मा से मुलाकात हुई लेकिन दीक्षा नहीं लिया था उन्होंने, लेकिन तब से उन्होंने हरे कृष्ण मंत्र आरंभ किया। दिल्ली में उनको किसी ने एक चित्रपट दिया, एक नीले रंग के बालक का जो मोर पंख पहना हुआ हाथ में बांसुरी है उसके, उसको चित्रपट को देखे बहुत मोहित हो गए। वो लोगों ने कहा कि इसका नाम कृष्ण है और इसी को भगवान मानते हैं इंडिया में, तो वो उनको देख के बहुत प्रभावित हो गया। अरे एकदम ही अट्रैक्शन हो गया देख के, और संभाल कर रखा उन्होंने अपने जेब बैग के अंदर। उस बैग के अंदर बहुत किताबें थी। एक दिन बैग खो गया उनका, तब वो समझ गए कि किसी भी चीज पर आसक्ति रखना नहीं चाहिए। वजन होता है बहुत, वजन वजन होने पर बहुत चलने में तकलीफ होती है। जब वो वजन खो गया तो बोले कितना आसान लग रहा था, हल्का लग रहा था, हल्का चलने मिलने में कुछ कष्ट नहीं हो रहा था। मतलब वैसे ही उन्होंने लिखा बाद में कि मैं क्या सीखा इससे, जब मेरा थैला खो गया तो मेरी बहुत कीमती किताबें थी, मैंने बहुत अच्छे अच्छे संतों का ग्रंथ संभाल कर रखे, उसमें मैं पढ़ता था, बहुत सीख प्राप्त की थी उसमें से। मेरा तो धन था पूरा, वो ना रुपया था डॉलर था कुछ नहीं था, लेकिन मेरा धन वो किताब था, जो ज्ञान था जो मेरे पास था, लेकिन बहुत भारी था वो। तो रस्ते पर रखे, जरा ढूंढने गए तो बक्सा पूरा गायब हो गया थैला उनका, बहुत दुख हुआ उनको, अरे मेरा साधन चला गया पूरा। लेकिन उनको अचानक भगवान की इच्छा क्या है, ऐसे उन्होंने विचार किया क्या भगवान की इच्छा होगी इसके अंदर। तो उन्होंने कहा कि इस दुनिया की धन दौलत, इस दुनिया का रिश्ता परिवार अधिकार पोजिशन सुंदरता, ये सब जो है वो इस वजन की तरह है, वो जीव की प्रगति को रोकता है, जीव की गति जो है बहुत धीरे हो जाती है उससे। जैसे वजन खत्म हो गया तो कितना हल्का लग रहा है, मेरा चलने का स्पीड भी बढ़ गया है। तो वैसे ही जब हम अपना जो बोझ है हमारे ऊपर, आत्मा के ऊपर पाप का बोझ है, धन की आसक्ति, शरीर की आसक्ति, मन की आसक्ति, ये सब आसक्तियां हैं, ये बोझ की तरह है, ये हट जाएगा तो भगवान की ओर रास्ता जो है वो एकदम हल्का हल्का हो जाएगा, चलने में आसानी हो जाएगी। ऐसे करते करते फिर वृंदावन पहुंचे और वृंदावन में उनके बड़े बड़े संतों से मुलाकात हुई, अच्छे संत थे, श्रीपाद बाबा और विशाखाचरण बाबा, आज भी मशहूर है वृंदावन में, अभी तो बहुत पुरानी बात हो गई वो, जवान पीढ़ी को कुछ पता नहीं है लेकिन बूढ़े लोगों को मालूम है श्रीपाद बाबा कौन थे, बड़े अच्छे बाबा थे। उनका ऐसा महात्मा बताया गया कि श्रीपाद बाबा कहीं भी प्रकट हो जाते थे, तो दिखाई पड़ते नहीं थे कि दूर से चलते हुए आ रहे हैं फिर यहां पहुंच गए, अचानक प्रकट हो जाते थे, बहुत आश्चर्यकर बाबा थे। हमारे हॉस्पिटल में एक माता जी आते हैं ना कुसुमलता देवी, कभी कभी कथा में बैठती ना, यहाँ पर छोटे से बाल है उनके, सफेद रंग की साड़ी पहन के आती है, तभी वो छोटी सी थी उम्र की, तो उन्होंने भी हमारे बाबा के दर्शन किए राधानाथ महाराज के, और राधानाथ महाराज जब भी श्रीपाद बाबा के साथ में थे तभी उनके साथ में भी दर्शन किए। अभी उनको याद आ रहा है किताब पढ़ के कि हाँ मैंने उनको देखा था उस समय जटाधारी थे लंबे लंबे। फिर उनके मन महाराज से मुलाकात हुई, फिर वो बरसाने चले गए। हम लोग कैंप करते ना, बहुत अद्भुत ऐतिहासिक जगह है वो। तभी रमेश बाबा कुछ कुछ 26 साल के होंगे, 26 साल के भी नहीं होंगे शायद, हाँ 26 साल के होंगे, वो भी बहुत जवान उम्र में अपना घर छोड़ के इलाहाबाद से आए थे, बड़े सिद्ध संत हैं वो, अभी भी मौजूद हैं, उनकी 72 साल की उम्र हो गई। अभी अभी हमारा हमारे कैंप में उनका ऑपरेशन हो गया कैटरेक्ट का, तभी वो 26 साल के विरक्त संत थे, एकदम विरक्त, जब डाकू थे वहां पर मान मंदिर में रहते थे, अपना लुटा हुआ धन वहां पर रखते थे, बंदूक वगैरह लेके आते थे, ऐसी जगह भी उन्होंने भजन किया है। उनको बहुत जिंदा मारने की धमकियां दी गई थी डाकुओं द्वारा, बंदूक बंदूक लेके डंडा वंडा लेके आए थे उनको मारने के लिए, उन्होंने कहा कि अगर राधा रानी चाहती है तो मार दो, राधा रानी चाहती है तो मैं जिंदा रहूंगा भजन करूंगा, आपको जरना है आपको कर लो, एकदम निर्दास होकर। हमारे महाराज जी लिखते हैं कि जब महाराज जी वहां पर थे, जब डाकू आए तो महाराज जी भी वहां पर थे, और आप सोच सकते हैं ना डाकू बंदूक वगैरह लेके आकर धमकी दे रहे थे, आप क्या होगा आपका, उनकी आंख में जरा सा भी डर नहीं था, एकदम निर्धास निर्भय आंखें थी उनकी, एकदम निर्विकार, कोई डर भी नहीं कोई कुछ भी नहीं, ऐसा निर्विकार आंखें बोल रहे हैं जो करना है कर लो आपकी इच्छा। डाकू भी चले गए, बोले क्या है ना गुस्सा है ना डर है ना कुछ है नहीं। ऐसे साधु के साथ में रंग संग 6 महीना रही वो मान मंदिर के ऊपर। ये अभी जब ऑपरेशन हुआ रमेश बाबा जी का, तो उन्होंने स्वयं बताया कि ये जो मान मंदिर के उतरने के बाद थोड़ा आगे एक कुआं है, वहां उतर के बाल्टी में पानी भर के मान मंदिर के पहाड़ पर लेके जाते थे। अरे आज तो आप सबके लिए बहुत सुंदर सीढ़ियां बना के रखी है, छोटी छोटी सीढ़ियां, जब हम भी गए थे तभी बहुत लंबी लंबी पत्थर की सीढ़ियां थी, बहुत दम में दम निकलता था। उसके पहले जब महाराज जी गए थे 71 में, वहां पर तो कुछ भी नहीं था, ऐसे ही पहाड़ था और पहाड़ पे चलते थे वो लोग दो दो बाल्टियां उठा के। एक और बाबा थे सके शरण बाबा, वो उनको सिखाते थे कैसे कुएं से पानी निकालना है और कैसे उसको लेके जाना है ऊपर रमेश बाबा जी की सेवा में, फिर कैसे माधुकरी करना है, माधुकरी मतलब क्या होता है, भिक्षा कैसे मांगनी होती है और कैसे किस घर में मांगनी चाहिए किस घर में नहीं मांगनी चाहिए, दिन में कितनी घर में मांगनी चाहिए, ये सब उनको सिखाते थे सके शरण बाबा। और ये दोनों जो घर घर में जाकर भजन कीर्तन करते थे पहले, फिर भिक्षा मांगते थे, फिर उनके द्वारा दी गई मोटी मोटी रोटी जो है इकट्ठा करते थे और सब लेकर रात को शाम को मान मंदिर के पहाड़ पर लेके आते थे और रमेश बाबा को अर्पण करते थे। फिर रमेश बाबा जी उसको तीन में डिवाइड करते थे और ये तीन लोग पहले बाबा को खिलाते थे और बचाव बाद में खा लेते थे और वहीं दिन रात भजन करते थे। उधर भी सांप निकला था एक बार भयंकर, जब महाराज जी बैठकर उधर उनको लैटरिन हो रहा था, बहुत दस्त लग रहे थे, छूटने को शक्ति नहीं हो रही थी और गुफा में बैठे थे, उधर नाग आया उनके सामने ऐसे, तब भी उन्होंने मन में भगवान से प्रार्थना किया, हे भगवान आप अगर नाग के रूप में आए हो, अगर मुझे डसना चाहते हो तो डस लो, लेकिन मैं अभी असहाय हूं, डसेंगे नाग डसेगा तो मर जाऊंगा, तो भी असहाय हूं और भागने की शक्ति मुझ में है नहीं, क्योंकि मैं लूज मोशन करके तो एकदम पूरा फ्लैट हो गया हूं, तो हिल नहीं सकता यहां से, अभी आपके सहारे हो। ऐसे मन में विचार किया, नाग ने बहुत देर उनको देखा और नाग चला गया, नाग ने बाढ़ उनको डसने का प्लान कैंसिल कर दिया। आप सोच सकते हैं अगर हमारे सामने नाग खड़ा हो गया तो क्या होगा हमारी अवस्था, भगवान की याद आएगी हमको? हाँ, रोज हरे कृष्ण जब करते हैं उस समय क्या जब करेंगे। लेकिन संत का लक्षण है, संत जो है हर संकट के अंदर, हर संकट के समय, हर भयंकर स्थिति में भगवान की याद करता है। ऐसे ही एक बार वो किसी नदी में डूब रहे थे, नदी में स्विमिंग करना आसान है लेकिन नदी के कीचड़ के अंदर फंस गया ना आदमी तो वो बाहर निकलता नहीं, अंदर 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 उसको बोलते क्विक सैंड बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं हिंदी में उसको, दलदल, दलदल, दलदल में बड़ा आदमी गिर गया ना तो वो स्टडी स्पीड से खाली अंदर प्रवेश करता है, धीरे धीरे अंदर ब्यूटीफुली एकदम अंदर प्रवेश करता है, कितना भी हाथ तार चलाएगा तो और तेजी से अंदर चला जाएगा। दलदल में वो एक ही बार एक ही प्रसंग के अंदर दो बार मर रहे थे, एक बार जल के अंदर एक बार दलदल के अंदर, अचानक किसी ने उनको बचा लिया। दलदल में जब डूब रहे हैं धीरे धीरे मौत के मुंह में जा रहे हैं तो उन्हें भगवान से प्रार्थना किया कि भगवान ये आपकी क्या लीला है, क्या इच्छा है आपकी, जो भी इच्छा है मैं आपको मिलने के लिए आ रहा हूं, जो भी आपकी इच्छा है कर लो, तो किसी ने उनको बचा लिया। ऐसे अनोखे अद्भुत ऐसे कम से 50 प्रसंग होंगे उनके जीवन में, जीवन मृत्यु के संघर्ष के बीच में ऐसे प्रसंग थे उनके, जिससे वो निकल कर आखिर फिर 6 महीना वहां पर मान मंदिर रहे, फिर वहां से वो उनका वीजा खत्म होने वाला था तो फिर वो भारत में चले आए, सॉरी मुंबई में चले आए। मुंबई में आए तो वीजा का ऑफिस तो था, उसके पास बड़ा बड़ा बोर्ड लग रहा हुआ था, हरे कृष्णा सत्संग प्रोग्राम कीर्तन फेस्टिवल वगैरह वगैरह, तो उनको कुतूहल हो गया तो वो गए उसके अंदर, बहुत भीड़ थी, बहुत ज्यादा भीड़ थी, हजारों लोग थे, महाराज बैठे 10,000 लोग थे कम से कम। तो जटाधारी कोई युवक होता ना साधु बना हुआ, साधु के वस्त्र पहना हुआ जटाधारी कोई साधु हिमालय से आया है, बैठ गया भरी भीड़ के अंदर। कुछ देर बाद प्रभुपाद जी स्टेज पर आए कथा करने के लिए, सैफरन गेहुआ वस्त्र पहन के आसन पे बैठ गए, राधा माधव भजन गाया, हम गाते ना इनको जरा जगाओ, साधु का ड्रेस पहन के आसन पे बैठे और जब उन्होंने प्रवचन शुरू करने का आरंभ टाइम आया तो अचानक किसी को बुलाया उन्होंने, आ जाओ, किसी को पास में बुलाया, कान में कुछ बोला और वो आदमी सीधा प्रभुपाद जी के यहां से निकला, स्टेज से उतरा और सागर की तरह भीड़ थी उसके अंदर, पूरा सागर की तरह भीड़ से ऐसा 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 निकल 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 बहुत दूर तक आया, सीधा महाराज जी के पास आया, रिचर्ड बोला आपको प्रभुपाद बुला रहे हैं, बोले मुझे कुछ देखते और किसी को बुला बोलते होंगे, गलती से मेरे पास आते होंगे, मैं तो जानता भी नहीं उनको, नहीं नहीं प्रभुपाद जी आपको बुला रहे हैं और आपको उनके स्टेज पर उनके पास बिठाने की उनकी इच्छा है। उनको आश्चर्य हो गया, अरे इतने हजारों की संख्या के अंदर दूर से एक साधु मुझे कैसे पहचान लिया, उन्होंने कैसे पकड़ लिया, कैसे देख लिया, ठीक है सब। वो हाथ पकड़ के आदमी उनको पूरा यार भीड़ में से निकाल के निकाल के निकाल के सीढ़ियां चढ़ के स्टेज पे प्रभुपाद जी के पास में बिठाया, आप देख सकते हैं ना, जनता बड़ी नीचे खड़ी है, नीचे बैठी हुई है, बहुत ऊंचा स्टेज है, उसके ऊपर केवल प्रभुपाद जी बैठे हैं आसन पे, उसके बाद में एक आदमी बैठा हुआ है, लंबी जटा वाला कोई साधु, इसके मैले कपड़े हैं, बैठा हुआ है। पूरी कथा उन्होंने वहां बैठकर सुनी, और कथा होने के बाद में उनको लेकर अंदर चले गए प्रभुपाद जी। वहां पर मालती माता जी उनके भोजन का इंतजाम कर रही थी, उनका थाली आया तो मालती माता जी ने तो सब लोग उनको रोका कि आपको यहाँ एंट्री नहीं है। प्रभुपाद जी बोला इसको आने दो, तो गेट खुल गया, उनका अंदर प्रवेश दिया, बैठे गए, बैठे यहाँ पर। प्रभुपाद ने प्रसाद पाया, अभी वो बचता है ना महाप्रसाद साधु का, सब लोग उस पर आँख रखते हैं कि हमको मेरा महाप्रसाद मिले। तो प्रभुपाद ने बताया ये मेरा महाप्रसाद जो है इसको खिलाओ। प्रभुपाद जी ने पूरा महाप्रसाद जो है मालती माता जी ने इनको खिलाया, और उसके बाद वो चले गए, दिल्ली चले गए अपना वीजा वीजा बनाने के लिए। फिर वापस वृंदावन में गए, फिर वापस वृंदावन में जब गए तो उनको प्रभुपाद से थोड़ा आसक्ति हो गया था, इसलिए इस्कॉन के मंदिर में गए। जब वहां अभी हम लोग जाकर रह गए ना वृंदावन में, इस्कॉन कृष्ण बलराम मंदिर, वहां पर रहने लगे। लेकिन उनकी सोने की जगह थी कितने में, केशी घाट के पास थी, चीर घाट के पास, जहां पर भगवान ने गोपियों के वस्त्र चुराए थे जमुना जी से, वहां पर ये सोते थे। एक वस्त्र पहनकर सोते थे, उसी वस्त्र को ठंड में जमुना जी में धोते थे, निचोड़ते थे, और फिर झटक के उसको पहनते थे, और फिर दिन भर उसको पहनते थे, बदन पे वही कपड़ा सूखता था दिन भर में, फिर सेकेंड डे उसी कपड़े को धोते थे, और उस तुरंत 5 मिनट बाद उसको निचोड़ के पहनते थे, और राधारमण जी की मंगलारती करते थे, और वहां से सेवा कुंज की गली से निकलते निकलते राधा वल्लभ जी की 6 बजे मंगलारती करते थे, और फिर वो घनश्याम बाबा उसको मिलने जाते थे, ऐसा उनका दिनचर्या था। तो ये भक्त लोग बड़े परेशान थे मंदिर में, अरे ये आदमी जो है दिन भर यहाँ रहता है लेकिन रात को जमुना जी के किनारे सोने को चला जाता है, अजीब आदमी है, उसको डांटते थे वो लोग, और मंदिर में रहने को बोलते थे, फिर भी महाराज जी रात को चले जाते थे, और बोलते थे आप वृंदावन में मत रहो, आप हमारे साथ प्रचार करने चलो, आगरा जाओ, दिल्ली जाओ, हरियाणा जाओ, हमारी बस पार्टी में चलो, वहां पर प्रचार करो। तो उनका वृंदावन छोड़ने की इच्छा नहीं थी, तो सब लोग धारते थे, और उन्होंने प्रभुपाद से कंप्लेंट किया कि ये जो लड़का है ना ये हमारी मानता नहीं है, हमेशा मंदिर में सोता नहीं है, ये जमुना के दर जाके सोता है, और मंदिर के किसी भी अधिकारी के कंट्रोल में आता नहीं है, हमेशा बोलता है वृंदावन में रहना है। तो प्रभुपाद जी उस दिन जा रहे थे, मतलब अपना 10 दिन का वहां पर जो रहते थे, उसके बाद में बाहर जाने के लिए निकल रहे थे, दोनों तरफ भक्त लोग खड़े थे, और प्रभुपाद जी सबको विदा करते करते हरे कृष्णा बोलते बोलते आगे आगे बढ़ रहे थे। सब तरफ से लोग दोनों तरफ से फूल अर्पण कर रहे थे, उनको दंडवत कर रहे थे, अभिवादन कर रहे थे, नमस्कार कर रहे थे। लास्ट में हमारे महाराज जी खड़े थे, तो आगे प्रभुपाद जी उनके पास खड़े हुए और उनकी आंखों में देखने लगे, कुछ भूत बोलने रहे हैं, खाली देख रहे हैं, ये भी उनको देख रहे हैं, वो भी उनको देख रहे हैं। तो महाराज जी इस किताब में लिखते हैं कि मानो मेरे आंखों के माध्यम से प्रभुपाद जी अंदर 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 प्रवेश कर रहे थे, सब जगह पे अंदर एक्सरे कर रहे थे, मेरे हृदय में क्या है, मेरे मन में क्या चल रहा है, पूरा रिसर्च कर रहे थे। हाँ, पूरा रिसर्च करने के बाद बहुत देर तक ऐसे खाली आंख में देख रहे हैं। तो पूछते हैं आपको वृंदावन अच्छा लगता है? महाराज ने कहा हाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो आप यहीं रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो महाराज लिखते हैं कि उस समय मेरा प्रभुपाद के प्रति इतनी श्रद्धा उत्पन्न हो गई कि मेरे हृदय की बात ये जानते हैं, और स्वयं इतने बड़े आचार्य होने पर भी दुनिया भर में यात्रा कर रहे हैं, वृंदावन का रस जो है भक्ति का वो दुनिया भर में बांट रहे हैं, इतने बड़े आचार्य हैं, इनके हजारों शिष्य हैं, लेकिन मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति के पास आकर बोल रहे हैं कि आपको वृंदावन अच्छा लगता है, तो आप यहीं रहो। महाराज कहते हैं उस समय मैंने निर्णय किया कि अभी अगर मुझे बोलेंगे अमेरिका चले जाओ या आगरा चले जाओ तो मैं तैयार हूं जाने के लिए। इसको कहते हैं शरणागति। शरणागति मतलब क्या होता है? शरणागति जब होती है तो हृदय से होती है, बाहर से नाटक नहीं होता है उसका। तब प्रभुपाद जी ने तय कर लिया कि अभी मैं इनसे ही दीक्षा लूंगा। मैंने उनसे पूछा है हमारे महाराज जी से कि आप लोगों ने अपने हिमालय के अंदर 700 वर्ष के उम्र के कैलाश बाबा से मुलाकात की, दलाई लामा से मुलाकात की धर्मशाला के अंदर, और टाटवाला बाबा, और कितना लोगों से आपने पहचान आपकी हुई, आप साथ में रहे उनके, उनका जीवन देखा, उनके साथ में कुछ सीखा आपने। हाँ, बाद में फिर आप रमेश बाबा के पास भी गए, उन्होंने भी आपको कितना शिक्षा दिया, विरक्त जीवन आपने उधर 6 महीने तक बिताया साधु की तरह। तो आपने इतने सबसे बड़े बड़े महात्माओं को छोड़कर प्रभुपाद से दीक्षा क्यों लिया आपने? ऐसे क्या बात थी प्रभुपाद जी के अंदर जो बाकी सब लोगों के अंदर नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि जो करुणा होती है ना, करुणा मन की, मतलब किसी व्यक्ति के बारे में होते ना कंपैशन, प्रभुपाद जी सबसे बड़े भक्त थे भगवान के, लेकिन फिर भी वो अपना वृंदावन धाम का निजी वास्तव्य निवास छोड़ के देश विदेश भ्रमण कर रहे थे और उनको वृंदावन हृदय में लेकर उनको वृंदावन का परिचय करा रहे थे और लोगों को सब देश विदेश से लोग वृंदावन में लेके आ रहे थे, उनको वृंदावन को परिचय करा रहे थे, यात्रा करा रहे थे। तो कितना त्याग कर रही है, मैं जितने बाबाओं को मिला मैं वो सब अपनी जगह बैठे हुए हैं, कोई गुफा में हिमालय में, कोई किधर कोई किधर कोई किधर, कोई वृंदावन में, सब अपनी जगह बैठे हुए हैं, कोई अपनी जगह छोड़ के जा रहे हैं। बहुत अच्छे संत हैं, भजन है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन ध्रुव महाराज जी कहते हैं भागवत में, ध्रुव महाराज जी क्या बोलते हैं कि अगर कोई वास्तविक संत है, अगर किसी को भगवान का साक्षात्कार हो गया है तपस्या के फल के रूप में, तपस्या जो कष्ट किया है मेहनत किया है उसके परिणाम के स्वरूप अगर भगवान ने उनको अपना दर्शन दिया है और उनको भगवान का साक्षात्कार हुआ है तो वो हिमालय में क्या कर रहे हैं? उनको हिमालय छोड़कर शहर में आना चाहिए जहां पर लोग माया में फंसे हुए हैं, घर गृहस्थी में, धन दौलत में, अपने काम वासना में और द्वेष में और हिंसा में फंसे हुए हैं, उनको जाकर वो साक्षात्कार बांटना चाहिए उनको जो भगवान ने उनको अनुभूति दिया है। ऐसे प्रहलाद महाराज भागवत में बोल रहे हैं, तो संत तो वही है अगर इसको साक्षात्कार हुआ है तो वो साक्षात्कार लेकर घर में नहीं बैठता या कहीं गुफा में नहीं बैठता, वो छोड़ के लोगों को वो साक्षात्कार बांटने के लिए जगह जगह चला जाता है। वो तो मन में करुणा उत्पन्न होती है, अरे इतनी सारी हजारों लाखों करोड़ों जीव जो है माया में फंसे हुए हैं, दुख भोग रहे हैं और मैं अकेला साक्षात्कार प्राप्त करके आनंद प्राप्त कर रहा हूं, नहीं मुझे बांटना चाहिए सब लोगों को। बोले सच्चे आचार्य वही हैं जो पतित जीव हैं, बद्ध जीव हैं, दुख भोग रहे हैं, उन तक अपनी कृपा पहुंचाने के लिए, भगवान की कृपा को पहुंचाने के लिए वहां तक पहुंचते हैं। वो अपार करुणा मैंने प्रभुपाद जी के अंदर पाई और बाकी सब संतों को मेरा नमस्कार है, अभी भी मैं उनका आदर करता हूं, लेकिन सबसे अधिक करुणा जो थी वो मैंने प्रभुपाद जी के अंदर पाई। ये महाराज जी ने मुझे पर्सनली उसका आंसर दिया था इस प्रश्न का। तो ये करुणा जो है ना, ये संत का लक्षण है और वो करुणा उन्होंने देखी, इसलिए उन्होंने अपना जीवन जो है प्रभुपाद जी के चरणों में अर्पण किया। और एक नरसिंह बाबा करके रहते हैं उधर मान मंदिर में, उनकी ये बात मैंने उन्होंने मुझे बताई, बहुत अजीब बात है ये। वो कहते हैं जब वो, क्योंकि जब महाराज जी वहां पर थे छोटे उम्र में, जटा बढ़ाकर वहां पर थे, तो ये लोग भी वहां पर थे छोटे छोटे उम्र में थे, अभी वो सब लोग बूढ़े हो गए। एक प्रकाश सिंह नाम के व्यक्ति थे, वो अभी 80 साल के हो गए, उनके पुत्र का नाम जो है राधाकांत सिंह, जो हमारे बड़े मान मंदिर के अच्छे मित्र हैं, वो सब बालक थे छोटे छोटे 4-5 साल के। तो ये प्रकाश सिंह, सके शरण बाबा, रमेश बाबा और ये सब बाबा जो है साथ में रहते थे उस समय। तो नरसिंह बाबा क्या बोलते हैं, जब ये तुम्हारे गुरुजी हमारे पास पहली बार आए थे ना, तो उनकी आंखों में ऐसा भाव था कि कुछ खोज रहे हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं। होता है ना, कोई आदमी ढूंढे आता है, कुछ खोज रहा है, कुछ खोया हुआ है, ये कुछ खोया हुआ चीज खोज रहे हैं। उनकी आंखों में हमेशा ये भाव था कि कुछ ढूंढ रहे हैं वो। लेकिन आज जब वो आपको लेके यहां पर आते हैं यात्रा में, तो उनकी आंखों में क्या भाव है कि जो वो खोज रहे थे वो उनको मिल गए, ऐसे आज उनकी आंख में ऐसा भाव है, ऐसे बोलते हैं। रमेश बाबा जी क्या बोलते हैं कि जब ये आए थे हमारे पास तो हमको लगा था कि ये हिप्पी हैं, लंबे बाल वाले, बोलते ना वो भटका हुआ जवान आदमी होता है ना, उसको पता नहीं क्या करना है, ऐसे ही घूम रहे हैं इधर उधर। लेकिन बाद में पता चला कि बहुत पढ़े लिखे भी हैं, उन्होंने साहित्य का पढ़ाई भी किया है, शास्त्र का पढ़ाई भी किया है, तपस्या भी किया है, सच्चे साधु के रूप में रहना चाहते हैं। तो हमने जब सबसे पहले हम 86 में गए थे बरसाने में, तो रमेश बाबा के साथ में हमारा मुलाकात कर दिया राधानाथ महाराज ने कि इनसे मिलिए, रमेश बाबा इनके पास में रहा था 6 महीने। तो रमेश बाबा हिंदी में बता रहे हैं हमको, महाराज जी को हिंदी नहीं आती है, लेकिन रमेश बाबा जी हमको हिंदी में बता रहे हैं कि आप लोग इनके साथ में आए हो, इनके अनुयायी हो, कुछ शिष्य भी होंगे उनके, लेकिन ये मत समझना आप लोग कि ये विदेशी हैं, इनको पता नहीं कौन से कुल से आए हैं, कहाँ से आए हैं, ये संत है, साधु है, ये भूल मत करते बैठना कि ये विदेशी है और उनको कुछ ज्ञान नहीं होगा, ये बड़े संत हैं, हमने इनका साथ संग किया है, हम अनुभव किया है कि ये बड़े संत है, इसलिए उनको गलत मत समझना। तो हमने भी उनको हिंदी में जवाब दिया, नहीं नहीं ये तो हमारे गुरु समान हैं, हमारे गुरु जी हैं और बहुत पढ़े लिखे लोग भी इसके अंदर है और इनके हम 8 साल से अनुयायी हैं, हम 8 साल से उनका अनुयायी बने हुए हैं। और हाँ, आप जानते हो ठीक है बात नहीं, लेकिन नहीं जानते होगे तो मेरा बताना आपको फर्ज है कि ये विदेशी नहीं है, इनका शरीर विदेशी है, ये संत है भारत के। तो इस तरह से अभी भी लोग बोलते ना, अरे आपके गुरु फॉरेनर क्यों है, आप लोग को इंडियन कोई गुरु नहीं मिला क्या, आप लोग फॉरेन के पीछे क्यों भागते हैं? बोले फॉरेनर होना या इंडियन होना ये शरीर का धर्म है, शरीर फॉरेनर या इंडियन होता है। हाँ, आत्मा फॉरेनर नहीं होती है। आत्मा जो है वो आत्मा होती है, वो भगवान के धाम से इम्पोर्टेड आत्मा है। हम सबकी आत्मा इम्पोर्टेड है, मन में आप भी सब लोग इम्पोर्टेड हो। हाँ, वो अपना घर जो है उसको छोड़कर भूलकर भटककर हम लोग यहाँ पर पड़े हैं, इम्पोर्टेड माल है सब हम लोग, लेकिन देसी शरीर को धारण किया है। किसी ने अमेरिकन शरीर धारण किया, किसी ने इंग्लैंड का, किसी ने यूरोपियन, किसी ने स्पैनिश, किसी ने रशियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, भारतीय, जैपनीज, कोई चपटे हैं, कोई गोल है। ये सब शरीर का धर्म है। शरीर अलग अलग होता है, शरीर अमेरिकन होता है, इंडियन होता है, इंग्लिश होता है, क्या क्या होता है, लेकिन आत्मा जो है वो वही होती है जो भगवान का अंश होती है। भगवान ने ऐसा नहीं बताया कि केवल भारत के लोग मेरे पुत्र हैं, ममय वांशो भारतीय पुत्र, ऐसा नहीं बताया उन्होंने। उन्होंने कहा ममय वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, अनादि काल से जितने जितने प्रकार के अनंत जीव हैं, केवल अमेरिकन भारतीय मनुष्य शरीर के नहीं, जानवर के, पंछी के, मछली के, सब जितने शरीर हैं, वो सब शरीर में रहने वाले जितने जीव हैं, वो सब मेरे अंश है, ऐसे भगवान बोल रहे हैं। लेकिन ये भी बोल रहे हैं गीता में कि आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। जो अलग अलग प्रकार का शरीर यहां दिखाई पड़ रहा है वो आप नहीं हो, वो आप उसके अंदर जो आत्मा है वो आप हो। उस तरह से गुरु जो है वो अमेरिकन या ब्रिटिश या यूरोपियन नहीं होता है, गुरु गुरु होता है, क्योंकि गुरु की आत्मा गुरु होती है, शरीर नहीं गुरु होता है, शरीर तो खाली यंत्र है साधन करने का। तो ऐसे राधानाथ महाराज जब प्रभुपाद जी दीक्षा लिए, तो प्रभुपाद जी दीक्षा लेते ही उनको अमेरिका भेज दिया प्रचार करने के लिए। 13 साल तक उनको वृंदावन में जितना आसक्ति उनका हुआ था, इतना प्रेम हुआ था वृंदावन से, वृंदावन से भेज दिया 13 साल तक, 71 से 84 तक उनको इंडिया में आने को नहीं मिला, एक ही जगह थे अमेरिका के अंदर। तालाब में बर्फ जमती थी, ऊपर का पानी है ना, इतना इतना बड़ा बर्फ ऐसा लेयर बनता था, आप चल के आ सकते तालाब के ऊपर से, इतना बर्फ जमती थी। तो वहां के बर्फ के पानी के अंदर वो डंडा लेकर बर्फ को तोड़ते थे और बर्फ को गड्ढा बनाते थे, वो उसमें से जल निकाल के स्नान करते थे और टूटे हुए बर्फ साबुन की तरह लगा के बॉडी को साफ करते थे। इतना तपस्या किया उन्होंने अमेरिका में 14 साल तक। एक पहाड़ पर रहे, उनको पहाड़ पर रहने का आदेश दिया गया, राधा वृंदावन नाथ की मूर्तियां, कोई नहीं, कोई दर्शनार्थी भी नहीं, कोई सेवक नहीं, कोई असिस्टेंट नहीं, एक व्यक्ति, रोज 6 आरती के लिए 6 बार स्नान, 6 बार भोग बनाना और 6 आरती करना अकेले। और फिर ऐसा एक समय आया कि 1.5 साल तक उन्होंने दिन भर 6 आरती 6 भोग 6 बार स्नान करके सेवा किया भगवान का, और रात को 9:30 से लेके सुबह 3:30 बजे तक जंगल में अमेरिका के ठंड में उन्होंने कीर्तन किया 1.5 साल तक। और सोए कितना घंटा, 2 आरती के बीच में आधा घंटा 15 मिनट, आधा घंटा 15 मिनट, दोपहर को शयन करने के बाद में, शाम को 4 बजे उठाने के पहले 2 घंटा, ऐसे सब मिलके 3-3.25 घंटा सोते थे, 4-5-6 ब्रेक के अंदर, रात को सोए नहीं, क्योंकि 9:30 को वो 1.25 घंटा उस पहाड़ से उतरकर नीचे आके अखंड कीर्तन किया करते थे अकेले। कैसे, एक हाथ से करताल, एक करताल नीचे रखा है ऐसा, एक नीचे रखा है और ऊपर से इसको बजा रहे हैं, और एक हाथ से मृदंग बजा रहे हैं, और एक पांव मृदंग पर रखा है उसको पकड़ कर रखने के लिए, एक हाथ से करताल बजा रहे हैं, एक हाथ से मृदंग बजा रहे हैं, और रात भर अकेले बिना किसी ऑडियंस के साथ में कीर्तन कर रहे हैं। तो सुबह 3:30 बजे कोई व्यक्ति उनको रिलीव करने आता था, अखंड कीर्तन का प्रोग्राम तय हुआ था ना, तो सब लोग दिन में अपना राउंड लेने को तैयार थे, अपना अपना घंटा टाइम टेबल, रात को कोई तैयार नहीं था। तो वहां के स्वामी थे, उन्होंने कहा राधानाथ को बुलाओ पहाड़ से नीचे, वो करेगा। दिन रात भगवान की सेवा ठंड में करने के बाद में, जो रात को सोता है आदमी, पर सोने का नहीं, अभी कीर्तन करना है, तो रात भर कीर्तन करते थे। फिर 3 बजे को आता था रिलीव करने के लिए, फिर वापस 45 मिनट जंगल के दलदल में से ऊपर जाकर ठंडे पानी में स्नान करना, भगवान के लिए मिठाई बनाना, भगवान को जगाना, मिठाई अर्पण करना, फिर श्रृंगार आरती, फिर भोग आरती, उत्थापन आरती, राजभोग आरती, भर खर टंग करते 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 1.5 साल बिताया। फिर वो बोला कि अभी जंगल में चलना बहुत टाइम लगता है, एक घोड़ी दो, घोड़ी, घोड़ी पे बैठ के हम 15 मिनट पहुंच सकते, 1.5 घंटे के बदले में 15 मिनट पहुंचेंगे तो अधिक कीर्तन करेंगे, उतना लोगों को कम समय मिलेगा, मैं अधिक कर सकता हूं। तो उनको एक घोड़ी दिया गया बिना लगाम की। तो एक दिन वो पहली बार जब घोड़ी को लेकर उतर रहे थे, 1.5 साल के बाद की बात हुई, तो घोड़ी ऐसी भागी जोरदार, तो वो महाराज जी हवा में, घोड़ी नीचे, महाराज जी हवा में, घोड़ी नीचे, ऐसा समझता कोई पकड़ने के कुछ था नहीं। अचानक घोड़ी रुक गई, तो महाराज जी हवा में थे, घोड़ी रुक गई तो घोड़ी के आगे जाके गिर गए और घोड़ी ने जाकर उनके पैर पर जोरदार पांव दिया, उनका घुटना जो है थोड़ा टोटल फ्रैक्चर कर दिया। तो उसी घोड़ी के ऊपर लटक के महाराज जी नीचे आए, उतना उतरे सैनिक में देखा युद्ध में कैसे होता है, जख्मी सैनिक को डालते हैं घोड़े के ऊपर उल्टा और वो लेके जाते हैं तंबू के अंदर, वैसे बीच जंगल में पहाड़ पर इनका फ्रैक्चर हो गया अंधेरे के अंदर रात को, 9:30 बजे अंधेरा, उधर लाइट बेट कुछ है नहीं, उधर गिर गए, पैर फ्रैक्चर हो गया। तो जब तक वो नीचे आए तब तक लेट हो गया था ना, वो फ्रैक्चर हो गया, वो अपने अपने जमीन पे ऐसे क्या कहते हैं उसको क्रॉलिंग, हाँ सरपटते हुए ऐसे घोड़े पे बैठ गए, घोड़ी दिन धीरे धीरे नीचे लेके आई, तब तक वो जो आदमी जो था ना रिलीव करने वाला था वो परेशान हो गया, वो छोड़ के चला गया। तो जब यहाँ लौट के आए तो भी यहाँ पर कोई नहीं था, खाली करताल मदन पड़ा हुआ है। उस टूटे हुए टांग को लेकर रात भर कीर्तन किया, तो ये पुकारेगा तो भी कोई है नहीं उधर पुकार के आने के लिए, रात भर उस खून से लथपथ घुटने को लेकर जो घोड़ी के पैर से स्मैश हो चुका था, ऐसा घुटना फैलाकर बैठे और कीर्तन किया। और सुबह जब पहली पार्टी आई उनको रिलीव करने के लिए, देखा अरे क्या पूरा सुजा हुआ है घुटना और खून से लथपथ हो गया है, तुरंत उसको लेके गए, उनको इलाज किया। और तब बोले कि अभी तुम कैसे ऊपर जाओगे, अभी इधर नीचे रहो, ऊपर किसी और को देते हैं। तब जाकर उनका ऊपर का जो वनवास था 1.5 साल का वो खत्म हो गया और नीचे ही राधा वृंदावन चंद्र के मंदिर में रहने लगे। ऐसा अद्भुत कहानियां उनकी अलग अलग प्रकार की, कि अपने जीवन में प्रभुपाद जी को मिलने के पहले कितना तपस्या किया उन्होंने, प्रभुपाद जी को मिलने के बाद भी कितना तपस्या किया, और आज भी वो क्या कर रहे हैं, उनकी जीवन की कहानी सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। ऐसा सच्चा तपस्वी महात्मा है हमारे गुरुदेव, और प्रभुपाद जी को उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। हम सब लोग उनके बड़े ऋणी हैं, क्योंकि उन्होंने हम सब डॉक्टरों को और जितने भी मेडिकल लोग हैं उनको एंगेज किया अच्छी तरह से, और कैसे हमारे मेडिकल प्रोफेशन का उपयोग जीवों के उद्धार के लिए हम कर सकते हैं, कैसे भटके हुए लोगों को, भगवान को भूल कर जीने वाले लोगों को, बीमारी को ठीक करने के बहाने, डॉक्टर के इलाज के बहाने कैसे उनको भगवान की ओर ला सकते हैं। हम सब लोग कर्मचारी बनकर यहाँ पर आते हैं, कुछ लोग नए हैं, कुछ लोग पुराने हैं, सब को जानते हैं कोई नहीं जानते हैं, सभी लोगों को इस अस्पताल में भगवान के विषय में जानकारी हो रही कि नहीं हो रही। हाँ आप सब लोग भी ऑन ड्यूटी ऑफिशियली बैठे हो और कथा सुन रहे हो, हर मंगलवार को सुनते हो, हर बुधवार को यहाँ पर कथा होती है, उत्सव मनाए जाते हैं। ऐसा कौन सा अस्पताल दुनिया में है जहाँ पर गोवर्धन पूजा मनाई जाती है, सब नर्स डॉक्टर मिलकर पहाड़ बना रहे हैं खाने के और गोवर्धन महाराज को अर्पण कर रहे हैं, सब लोग 600-800 लोग परिवार के साथ में गोवर्धन का महाप्रसाद ले रहे हैं, नाच रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, ऐसा कभी हॉस्पिटल में होता है क्या? बोलते हैं आईसीयू में हम लोग खाली हरे कृष्ण करते हैं, यहाँ पर आईसीयू में हरे कृष्ण करने का अलाउड नहीं, यहाँ पर खाली इंटेंसिव केयर होता है, सब लोग बाहर बैठो। और हमारे हॉस्पिटल में मरने वाले व्यक्ति को अलग निकाल कर बाजू में रखे पूरा जोरदार कीर्तन होता है और भगवान के नाम के धुन के गूंज के अंदर वो शरीर छोड़कर भगवान धाम में चला जाता है। ये हॉस्पिटल नहीं है, ये मंदिर है। बाय द वे मंदिर के अंदर हॉस्पिटल भी है, बाय द वे उधर मंदिर के अंदर बीमार लोगों का इलाज भी होता है। लेकिन NHE औषधि मांगी नाशो बारो लागी, हरिनामा महामंत्र लाओ तुम्हें मांगी, उसका सच्ची दवा कौन सी है? ये टेरामाइसिन, एम्पिसिलिन, हाँ क्या क्या बड़ी बड़ी दवाएं, इमिपेनाम, मैग्नामाइसिन, क्या है सब? माइसिन, मेरे पाप का फल है सब ये। तेरा माइसिन मतलब तेरा और मेरा सीन, दोनों का सीन, डॉक्टर का और पेशेंट का, दोनों का। तो ये सब जो दवा आपको देनी है शरीर को सुधारने के लिए, लेकिन यहां पर NHE औषधि, हरिनाम महामंत्र, उन सारे औषधि के साथ में यहां पर वो दवा मिलती है जो आत्मा के कल्याण के लिए आवश्यक है। शरीर का रिपेयरिंग, प्लम्बिंग करते करते, हाँ प्लम्बिंग, फिटिंग, टर्निंग, क्या क्या करते आप लोग यहां पर, सब काम शरीर के डॉक्टर लोग करते हैं फिट करने का काम, लेकिन आत्मा जो है फिर भी सुधरती नहीं है जब तक उसको भगवान के नाम का परिचय न हो, जब तक वो भगवान के नाम से एक रूप न हो जाए, जब तक वो भगवान की सेवा में लीन ना हो जाए तब तक आत्मा का उद्धार इलाज नहीं हो सकता है। और वो इलाज यहां पर मुमकिन है, इसलिए ये अस्पताल नहीं है, मंदिर है। और ये सब कल्पना जो है इसका विस्तार रूप से राधानाथ जी महाराज ने हमको समझाया था कि ऐसे आप करो, सबको प्रसाद दो, हर व्यक्ति को, हर पेशेंट को प्रसाद दो, हर व्यक्ति को हरे कृष्णा बोलो, सब हॉस्पिटल में भगवान को भोग लगा के सब पेशेंट को प्रसाद के रूप में डाइट खिलाओ, सब भगवान का फोटो लगाओ, मंदिर लगाओ, हरे कृष्णा धुन लगाओ, दिन भर नाम भगवान का गूंजना चाहिए, ऐसा अनोखा अस्पताल उन्होंने बनवाया, उनकी योजना थी। इसलिए हम लोग अभी बड़े रुबाब से यहाँ बैठे हैं आज। हाँ, हमारे परिवार का लालन पालन भी हो रहा है, उनको पगार भी मिलती है, उनको सेवा भी मिलती है, हमारा जो भी हम काम करते हैं सब भगवान की सेवा में अपने आप अर्पण होता है। हाँ, आप लोगों को पता भी नहीं होगा कि हम लोग जो काम कर रहे हैं, आपको लगता है हम नौकरी कर रहे हैं, लेकिन आप जो भी कर रहे हैं, पगार लेते भी होंगे, लेकिन आप जो भी यहाँ पर कर रहे हैं वो सारी सेवा जो है अपने आप भगवान के चरणों तक पहुंचाई जा रही है, और आपको सेवा के साथ में आखिर में भगवान की कृपा का मेवा भी मिलेगा। ऐसी अद्भुत जगह है। अब किसी और हॉस्पिटल में डॉक्टर बनोगे, नर्स बनोगे और कोई क्लर्क का काम करोगे तो आपको तनख्वाह मिलेगी और भी अच्छा होगा, लेकिन यहाँ पर वो सब हो रहा है, साथ में भगवान की कृपा भी प्राप्त हो रही है। जाने अनजाने में आप लोगों को भगवान के पास जाने वाली बोट में ऑलरेडी बिठा के रखा हुआ है। वी डोंट इवन नो हम लोग कहाँ जा रहे हैं, लेकिन हम लोग ऑलरेडी भगवान के धाम जाने वाली बोट में बैठ गए हैं। सब लोग कर रहे हैं अपना काम अच्छी तरह से, कोई बात नहीं। आज महाराज जी का जन्मदिवस है, आप सबको हम विनती करते हैं कि उनके जीवन चरित्र जो है उन्होंने अपने हाथ से लिखा है। ये इंग्लिश में है, इसका नाम है जर्नी होम, और ये मराठी में है, इसका नाम है त्रिशार्त पथिक, यानी कि प्यासा प्यासा राही। ये मराठी में है और ये हिंदी में है अनोखा सफर, ये वर्ड टू वर्ड है, इसमें इंग्लिश में जो है वो इसी में दिया हुआ है। मेरी आपको विनती है, कितना कॉस्ट है इसका? इंग्लिश जो है वो यहाँ पर थोड़ा डिस्काउंट में मिल रहा है, मंदिर में 400 रुपया है, यहाँ पर 375 में मिल रहा है, और हिंदी जो है अनोखा सफर 151, मतलब 44 रुपीज डिस्काउंट है उसके अंदर, 195 में लिखा है, यहाँ पर 151 में दे रहे हैं। हाँ, अनोखा सफर। और मराठी भी कितना? 151 में दे रहे हैं, 195 कॉस्ट लिखा है, लेकिन हमने सब ये कॉस्ट में खरीदा था। आपको पता नहीं होगा ये बुक जब पहले आने वाली थी तो हमने इसको 1200 रुपये दिए थे, 1200 रुपीज़ में बुकिंग किया था उसका, और उसके कुछ ही दिन के बाद में वो 400 में मिलने लगी 95 के अंदर, लेकिन कोई बात नहीं, हमने सबसे बड़ी कॉपी हमारे नाम पे आई थी इसमें। तो ये जो पढ़ता है किताब उसका जीवन बदल जाता है, क्योंकि आप यहाँ पर महाराज का दर्शन करते हैं, हॉस्पिटल में आते हैं, ठीक है ये डॉक्टर लोग के गुरु जी हैं, ये हमारे डायरेक्टर के गुरु जी हैं, ठीक है दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं, ठीक है महाराज जी हरे कृष्णा करते हैं, ये किताब पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि कौन है कौन वो व्यक्ति। आज उनकी ये किताब पढ़कर बड़े बड़े अमेरिका के फिल्म स्टार्स, पॉलिटिशियन जो है उनके पीछे पागल हो रहे हैं, उनका टीवी पर, रेडियो पर सब जगह प्रोग्राम चल रहा है केवल इस किताब को पढ़ने के बाद। और ये सब किताब लिखने में तैयार नहीं थे वो, मतलब क्या बताना है, वो मेरा निजी जीवन है वो, लेकिन उनके गुरु भाई थे, उनका नाम था परम पूज्य भक्ति तीर्थ महाराज, वो साउथ अफ्रीकन सन्यासी थे, बड़े संत थे वो, बड़े महात्मा थे। उनको एक कैंसर हो गया, मेलानोमा, वो सबसे फास्ट फैलने वाला कैंसर है, बहुत भयंकर, कभी कभी शुरू होके 15-20 दिन में आगे मर जाता है, इतना भयंकर कैंसर है। तो वो महाराज को वो कैंसर हुआ था, वो महाराज जी भी यहां पर आए हुए हैं, उनका नाम है भक्ति तीर्थ महाराज, उनका भी एक किताब है ब्लैक लोटस, उनकी जीवनी उसमें लिखी हुई है, काला गुलाब, क्योंकि वो साउथ अफ्रीकन थे। तो वो जब मृत्यु की शैया में थे भक्ति तीर्थ महाराज, तो वहां पर राधानाथ जी महाराज उनको सेवा करने गए थे, 7 हफ्ता उनकी सेवा में रहे हमारे महाराज जी, उनका बहुत सेवा किया, उनको संग दिया, प्रेम से बातें की, उनको अच्छी तरह से विदा करने में वहां 7 हफ्ते सब कुछ छोड़ के वहां पर रहे थे। तो मृत्यु की शैया पर जब ही भक्ति तीर्थ महाराज थे तो उन्होंने उनको विनती किया कि मैं मरने वाला व्यक्ति हूं, आई एम अ डाइंग मैन, मैं आपको विनती करता हूं कि आपकी जीवनी के आप उतारो ग्रंथ के रूप में, यू राइट द बुक ऑफ योर लाइफ, ये मेरी आखिरी तमन्ना है कि आप इस किताब को लिखो। तो जब उनके दोस्त भक्ति तीर्थ महाराज ने मृत्यु की शैया से उनको विनती किया तब उन्होंने उनको वादा किया कि हाँ मैं जरूर लिखूंगा, आपकी इच्छा पूर्ण करने के लिए वो किताब लिखूंगा। तो जब भक्ति तीर्थ महाराज गुजर गए तब महाराज ने फिर ये किताब लिखा, उसका प्रकाशन किया। आज भी उसमें लिखते हैं वो कि ये किताब मैंने मेरे प्रिय गुरु बंधु भक्ति तीर्थ महाराज की इच्छा पूर्ति के लिए लिखा है। तब तक वो किसी को बताने को तैयार नहीं थे उनके जीवन में क्या क्या हुआ है और कैसे कैसे उन्होंने भगवान की प्राप्ति के लिए तपस्या किया है। तो हम लोग इस किताब से पढ़ने के पहले, गुरु महाराज को धन्यवाद देने के पहले, भक्ति तीर्थ महाराज के बहुत ऋणी हैं, क्योंकि वो दोस्ती के वास्ता देकर उन्होंने जो उनको वादा किया उन्होंने, इसलिए तुम्हारे हमारे लिए आज ये किताब सब जगह उपलब्ध है। और अगर उपलब्ध है और हम नहीं पढ़ेंगे तो हम बहुत दुर्भाग्य है, क्योंकि हमको ये रहस्य जो है उनका क्या कैसा हुआ उसका मैंने आपको कुछ झलक दिया है। ये किताब पढ़ने बताने जाएंगे तो 12 घंटे लगेंगे आपको क्या किताब में लिखा है। तो आप लोग उसको पढ़ सकते हो, अभी भारत की सभी भाषा में इसका भाषांतर हो गया है, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, हिंदी, मराठी, गुजराती, सब भाषा में अनुवाद हो गया है। तो आपकी भाषा जो है हिंदी है, मराठी है, यह उपलब्ध है यहाँ पर। इंग्लिश का किताब से आधी की कम से कीमत नहीं मिल रहा है, केवल कॉस्ट है उसका, प्रिंटिंग कॉस्ट है, कोई उसमें प्रॉफिट का काम नहीं है। आप लोग उसको लीजिए, पढ़िए, अगर आपको बिल्कुल ही खरीदने में शक्ति नहीं है तो लाइब्रेरी में जाइए और इस किताब को लाइब्रेरी के बेसिस पर घर पर लेके जाइए। हाँ, हमारे डॉक्टर है ना निर्मल चंद्र बाबू, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि वो उनको पास जब पहली बार ये किताब आई फर्स्ट टाइम, तो वो किताब को नीचे रख ही नहीं पाए और उस दिन जो किताब पढ़ना आरंभ किया वो हॉस्पिटल में नहीं आए, दिन भर किताब पढ़ते रहे, शाम तक आधी हो गई थी तो शाम को भी पढ़ते रहे, रात को पढ़ते रहे, ओवर नाइट पढ़ते रहे और सुबह 5 बजे वो किताब उन्होंने खत्म कर दिया पढ़ के पूरा किताब। और नेक्स्ट डे काम पे आए और काम पे आते चक्कर आके गिर गए, बोला क्या हुआ तुमको, खड़े होने को शक्ति नहीं, क्यों, क्योंकि रात भर जबकि कल में जर्नी हूं किताब पढ़ा। ऐसे कई लोगों की ऐसी कथाएं हैं जो उन्होंने एक दिन में, आधे दिन में, पौने दिन में, डेढ़ दिन में, दो दिन में, ऐसे बैठ के एक ही झटके में छुट्टी लेकर खत्म कर दिया, उसको रख ही नहीं पाया नीचे, इतना सनसनी खेज, बोलते ना रोमांस, एक्शन, इमोशन, क्या नहीं है इसके अंदर। अगर इसमें पिक्चर बनेगी ना कभी लाइफ में, कभी आगे जाकर जर्नी होम पर पिक्चर बनेगी ना, तो वर्ल्ड के सबसे ज्यादा ऑस्कर मेडल इसको ही मिलेंगे, इतना ज्यादा इमोशन, एक्शन सब इसके अंदर है, हर प्रकार की थ्रिल इसके अंदर है, एडवेंचर है उसके अंदर, साहस कथा है, सब कुछ है इसके अंदर। तो आपको वैसा बोले क्या साधु की कथा पढ़ना है, क्या तपस्या करेगा और क्या गाजर खाएगा और जमुना जी में स्नान करेगा, क्या पढ़ना है इसके अंदर, ऐसा लगेगा आपको, लेकिन किताब पढ़ोगे ना आप, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, वो किताब को नहीं रख नहीं पाएंगे आप। जरूर पढ़िए इस किताब, जीवन आपका धन्य हो जाएगा। एक संत की परीक्षा है, वो संत जो है जिन्होंने इतना बड़ा तपस्या किया है, वो संत को आप मिल सकते हैं, इस अस्पताल में आते हैं वो, आपका दर्शन देंगे आपको, तो उनकी महानता क्या है वो उनको ये पढ़ के आप समझेंगे कि वो क्या संत है और कैसे संत है। और वो केवल संत नहीं जो दूर है कोई, नहीं, हमारे हॉस्पिटल के प्रेरणा स्थान है वो, हमारे हॉस्पिटल के साथ आप सबके साथ उनका हृदय अटका हुआ है, आप सबको धन्यवाद देने के लिए बार बार आते हैं। क्या बोलते हैं हमारे आके, एक ही बात बोलते हैं, मैं आप सबका ऋणी हूं, आप सब लोग यहां पर सेवा कर रहे हैं, मैं आपका धन्यवाद देने के लिए यहां पर आया, क्योंकि आप सब लोग जानते नहीं हो, आप कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई ब्लड टेस्ट कर रहा है, कोई और कुछ कर रहा है, कोई कर रहा है, सब मिलकर क्या कर रहे हैं हम लोग यहां पर, भूले भटके जीवों को जो मेरिज के बहाने आते हैं सबको भगवान से जोड़ रहे हैं, और इसके ऐसे अनोखे प्रोजेक्ट के अंदर आप सब लोग सेवा दे रहे हैं, इसलिए वो कहते हैं थैंक यू वेरी मच। मैं तो खाली आता हूं मिलने के लिए, आपको ऐसे बोलते हैं, लेकिन आप लोग यहां दिन रात रहकर इस अस्पताल को चला रहे हैं, और प्रभुपाद जी को जो इच्छा थी कि भगवान का नाम सब तक पहुंचे, वो काम आप लोग यहां पर पूरा कर रहे हैं, धन्यवाद देने के लिए यहां पर आते हैं, तो हम सबका भाग्य है बहुत। तो ऐसे महाराज जी का जन्म दिवस है, हम सब शिष्य लोग जो है उपवास करते हैं इस दिन उनके आदर के लिए, सम्मान के लिए। आज शाम को एक प्रोग्राम है जहां पर हम लोग पालघर में, बहुत बड़ा उत्सव है आज, वहां पर उनके जीवन के ऊपर चर्चा करेंगे, गौरव करेंगे, हमारा जो प्रोग्राम है उसमें भक्त लोग एकत्र होंगे और जो जो उनको अनुभव हुआ है महाराज जी के साथ में, जीवन में जो लाभ हुआ है उसका वर्णन करेंगे लोगों को, क्योंकि हर एक का अपना अपना अनुभव है उनके साथ में, तो वो शेयर करते हैं आज रात को, आरती करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनका गौरव करते हैं, अपना ऋण जो है व्यक्त करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की, हरे कृष्ण महामंत्र की जय।